ईश्वर के अनन्य रतन, अपनी सेवाओं से निरंतर परमात्मा की याद दिलाने वाले प्रबुद्ध एवं अनुभवी वक्ता, डबल डॉक्टर रूहानी और जिस्मानी, आदरणीय डॉक्टर सतीश गुप्ता जी हमारे बीच में उपस्थित है। एक बार हम सभी जोरदार तालियों से इफको परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। संक्षिप्त में मैं भाई साहब का परिचय देना चाहूंगी। आपका जन्म 1959 में हुआ। आपने 1980 में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से MBBS की। फिर 9 साल के बाद 1989 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही आपने इंटरनल मेडिसिन में MD की। उसके 2 साल के बाद 1991 में आपने कार्डियोलॉजी में FCCP की। 1982 से 1995 तक दिल्ली की ही कई हॉस्पिटल्स में आपने अपनी बहुमूल्य सेवाएं दी। इस दौरान 1986 में आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आए और राज्यों का अभ्यास किया। ईश्वरीय विश्वविद्यालयों की सेवाओं से प्रेरित होकर आपने 1995 में ब्रह्मा कुमारीज का ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ज्वाइन कर लिया और तब से यानी 1986 से आप वहीं पर अपनी सेवाएं देते हो। आप बहुत सारी इंडियन कार्डियोलॉजिकल सोसाइटीज के लाइफ मेंबर के तौर पर भी लोगों की हेल्थ की बेहतरी के लिए कार्य करते हो। उसकी बहुत लंबी लिस्ट है उन सोसाइटीज की। इसके साथ ही आप हेल्दी हार्ट एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन इंडिया के प्रेसिडेंट भी हैं। आपकी समाज के प्रति स्वास्थ्य और मेडिटेशन के क्षेत्र में की गई सराहनीय सेवाओं को देखते हुए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने आपको अनेक ऑनर्स और अवार्ड से सम्मानित किया है, जैसे कि अमेरिकन बायोग्राफिकल इंस्टीट्यूट USA ने आपको मिलेनियम मेडल ऑफ द ऑनर अवार्ड से नवाजा। IBS कैम्ब्रिज ने आपको आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी अवार्ड और इंटरनेशनल साइंटिस्ट ऑफ द ईयर के अवार्ड प्रदान किया। अच्छे से तालियां बजाएंगे। करंटली यू आर अ सीनियर कंसल्टेंट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड मेडिसिन एट ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू एंड शांतिवन। फरवरी 1998 से ब्रह्मा कुमारीज कैंपस में CAD रिग्रेशन प्रोजेक्ट चल रहा है, कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस। आप उसके प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर और कोऑर्डिनेटर हैं। ये एक बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। लोग यहाँ पर आपके पास ब्लॉक्ड आर्टरीज के साथ आते हैं टेस्ट करा के, और ये किसी मिरेकल से कम नहीं कि थोड़ी सी गाइडेंस के साथ, लाइफस्टाइल चेंज के साथ और राजयोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस से उनकी ब्लॉक आर्टरीज खुल जाती हैं और प्रॉपरली वर्क करना शुरू कर देती हैं। अभी तक आप CAD के हजारों कैंप्स लगा चुके हैं और इस कैंप के मार्वलस रिजल्ट्स को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली इसे स्पॉन्सर करती है। थ्रू दिस प्रोजेक्ट ही टच द लाइफ्स ऑफ मैनी बिकॉज ही हैड अ ड्रीम टू इनलाइटन ईच एंड एवरीवन। आपका संपूर्ण जीवन मानवता के लिए एक मिसाल है। अभी हम आपसे सुनेंगे, टॉपिक है गोल्डन प्रिंसिपल्स फॉर स्ट्रेस फ्री लिविंग। आदरणीय भाई साहब।
ओम शांति। आप सभी क्या समझते हैं, स्ट्रेस फ्री रहा जा सकता है इस दुनिया में? इज इट पॉसिबल टू बी स्ट्रेस फ्री? नॉट पॉसिबल। But I am giving a talk on golden principles for stress-free life. आपने जब से, आप कब से आए यहां पर शांति, यहां पर ज्ञान सरोवर में? कल से आए, परसों से आए ना? आपने यहां रहने वाले में कोई स्ट्रेस देखी है क्या? यहां जो रहते हैं, जो यहां पर ज्ञान सरोवर में रहते हैं, जिन यहां पर अकोमोडेशन डिपार्टमेंट में ठहरे हैं, जो अकोमोडेशन में ठहरे हैं, जहां पे खाना खा रहे हैं, उनमें कुछ स्ट्रेस देखी है आपने? या टीचर बहने जो आ रहे हैं, जो टीचर भाई बहने आ रहे हैं, उनमें स्ट्रेस देखिए? पर्सनली मिले किसी से? मिले किसी से? मिले ना? तो उनको स्ट्रेस क्यों नहीं होती है फिर? क्योंकि हम भी तो आपके जैसे इंसान है ना, नहीं? हमारे पास भी दो आंख, एक नाक, दो एक मुंह और एक हार्ट है, एक ब्रेन है, नहीं? हम लोग आपसे ज्यादा प्रेशर्स है ना? एक मुझे सुबह 3:30 बजे उठते हैं हम लोग, 10:30 तक हम काम करते हैं और लगातार लगभग काम करते हैं, लगातार ना? सिर्फ आधा घंटा पौना घंटा मेडिटेशन करते हैं, शाम को आधा घंटा मेडिटेशन करते हैं, थ्रू आउट द डे काम करते हैं. ऑलमोस्ट 14 आवर्स आई वर्क इन द हॉस्पिटल, 14 घंटे के आसपास मैं काम करता हूँ. तो फिर भी हमें तो स्ट्रेस नहीं होती, क्यों ऐसा क्यों? आपको स्ट्रेस होती है ना? तो आज आपसे बात करेंगे कि हाउ इट इज पॉसिबल टू बी स्ट्रेस फ्री. सब कुछ होते हुए आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है. जैसे हमने कुछ छोड़ा नहीं है. आई एम ए कार्डियोलॉजिस्ट. पहले एस्कॉर्ट्स में था, दिल्ली में गंगाराम में था, जीपी पंत में था, एम्स में रहा. और वहां से जब से मेडिटेशन जब मैं सीखा, जब 1986 में एम्स में था तभी सीखा, और तब से लेके अब तक जब सीख लिया, समझ आ गया, प्रैक्टिस में लाना, समझना अलग बात है, पर प्रैक्टिस में लाना जब से शुरू किया तब से लाइफ बदल गई. मतलब एक रियल स्ट्रेस फ्री लाइफ क्या होती है, और हम सब कुछ करते भी स्ट्रेस फ्री रहें. ऐसा नहीं कि हमें कुछ छोड़ देना है, या अपना प्रोफेशन छोड़ देना है, या अपना घर बार छोड़ देना है, जिम्मेवारियां छोड़नी है, अपने परिवार को, मुझे हम भी अपना परिवार संभालते हुए सब कार्य करते हुए फिर भी हम तनाव मुक्त कैसे रह सकते हैं, आज उस पर हम आपसे बात करते हैं. पीछे स्क्रीन पे है, इधर साइड में, इधर नहीं, पीछे नहीं. ओके. ये हमारा हॉस्पिटल है जहां ना मैंने अप्रैल 95 में ज्वाइन किया. और ये अभी नीचे भी एक हॉस्पिटल बना है, इसी ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर का एक और यूनिट बनी है, ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर, वहां भी हम लोग जाते हैं अभी. देखिए, आज हम स्ट्रेस फ्री की बात करें, इसके पहले हम बात करते हैं कि आज हम स्ट्रेस की क्यों बात करना चाहते हैं. व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस. थोड़ा आगे आगे आ जाओ तो अच्छा है ना. थोड़ा पीछे बैठे, थोड़ा आगे आ जाओ, सो दैट आप पीछे जो बैठे आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, पास में आ जाओ, पास में. दिल की बात करेंगे ना आपसे, क्योंकि मैं दिल का डॉक्टर हूं ना, तो दिल की बात करेंगे, तो दूर रह के बात नहीं करनी चाहिए. क्योंकि आई विल बी शेयरिंग माई एक्सपीरियंस ऑल्सो विद हार्ट पेशेंट्स. क्योंकि हार्ट डिजीज आज नंबर वन किलर है वर्ल्ड में ना, नंबर वन किलर है. ऑलमोस्ट एवरी थर्ड पर्सन डाइज, मतलब 33% डेथ्स आज हार्ट डिजीज से ही होती है, हार्ट अटैक से ही होती है. और उसी पे मैंने कार्य किया है, और उसी बीच में मैंने जो तनाव से मुक्त करके देखा लोगों को, जब उन राजयोग में सीखा, और जब वो स्ट्रेस फ्री हो गए तो उनके कैसे सारी बीमारियां खत्म हो गई, विद एविडेंस. आई विल बी टॉकिंग यू विद एविडेंस, है ना, ऐसे नहीं थियोरिटिकल बात नहीं करूंगा. आई विल बी टॉकिंग विद एविडेंस के सचमुच में हम उसका प्रूफ क्या कि हम स्ट्रेस फ्री हो गए, उस पर हम बात करेंगे. तो आज की जो हेल्थ केयर वो वन डायमेंशनल है. इट एड्रेसेस ओनली टू द बॉडी, सिर्फ बॉडी को एड्रेस करती है. जितने भी मेडिकल स्कूल्स हैं भारत में चाहे विदेशों में, वो सिर्फ बॉडी के बारे में पढ़ाते हैं. और इंसान बॉडी कब बनता है? इंसान बॉडी, इसको इंसान को बॉडी कब कहते हैं? डेथ के बाद कह रहे हैं ना. और हम क्या डॉक्टर्स को क्या सिखाते हैं? सिर्फ बॉडी के बारे में ना, सिर्फ बॉडी. जितनी भी मेडिसिन किसके लिए होती है? सर्जरी किस पे होती है? फिजियोथेरेपी किस पे होती है? वो सारा बॉडी पे है ना. तो उसका हमारा टोटल फोकस जो है बॉडी के ऊपर है. और आज एक फैक्ट है, हर आदमी जानता है कि लगभग 95% से अधिक बीमारियां मन में पैदा होती है पहले. अभी तो कहते हैं 100% बीमारियां मन से ही होती हैं, क्योंकि वन एक्सीडेंट भी मन से ही होता है. एक्सीडेंट मन से होता है कि बाहर से होता है? बाहर से होता है, मन से होता है, पर कारण तो मन ही है ना. कोई एक्सीडेंट क्यों करता है? शराब क्यों पीता है? एडिक्शंस में क्यों जाता है? कहीं ना कहीं अगर अटेंशन भंग हो तभी तो एक्सीडेंट होता है ना. स्ट्रेस में ही होता तभी तो एक्सीडेंट होता है. इवन जुखाम भी क्यों हो जाता है? कोल्ड, बार बार कोल्ड क्यों हो जाता है? हेडेक भी क्यों होता है? उसके पीछे भी स्ट्रेस है ना? तो बेसिकली एवरी डिजीज ऑफ माइंड एंड बॉडी इज बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ माइंड एंड स्पिरिचुअलिटी. आज जितने भी टीचिंग्स हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं भारत में, मेडिकल कॉलेजेस हैं या विदेशों में, कहीं भी ना मन के बारे पढ़ाते हैं, ना बॉडी के, ना आत्मा के बारे पढ़ाते हैं, ना स्पिरिचुअलिटी पढ़ाते हैं. तो हम देखेंगे आज का स्टेटस हम देखें हेल्थ का क्या है. और WHO की डेफिनेशन हेल्थ की क्या है, कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, mental, social and spiritual well-being and not just the absence of disease or infirmity. ये एक health की परिभाषा 1948 में WHO ने दी थी कि health जो है एक वो स्थिति है जिसमें आप शारीरिक तौर पे स्वस्थ हैं, मानसिक तौर पे स्वस्थ हैं, जिस समाज में आप रहते हैं उसके हिसाब से भी स्वस्थ हैं, माना आप सबके प्रति शुभकामना रखते हैं और फिर आप आध्यात्मिक तौर पे भी स्वस्थ हैं, अर्थात यू हैव ए मीनिंग इन लाइफ, यू लिव फॉर ए मीनिंग, नॉट फॉर जस्ट फिजिकल गेन्स, क्योंकि देयर शुड बी समथिंग मोर देन फिजिकल इन योर लाइफ, राइट? यू लिव फॉर लव, लिव फॉर पीस, लिव फॉर हैप्पीनेस, नॉट फॉर मनी ऑलवेज, राइट? तो एक जो बेसिकली विच कनेक्ट ऑल ऑफ अस, हम इंसानों को आपस में क्या कनेक्ट करता है? सारा वर्ल्ड, सारे वर्ल्ड की इंसान किस बात से कनेक्टेड है? एक पीस से कनेक्टेड है, लव एंड हैप्पीनेस। विश्व के सभी इंसानों को क्या चाहिए? शांति चाहिए, प्यार चाहिए और खुशी चाहिए। तो खाली बीमारी हमें नहीं, इसको हम हेल्थ नहीं कहते, क्योंकि हमारे अंदर हजारों बीमारियां पनप रही हैं सबके अंदर, ना जाने कौन कौन सी बीमारी के जीन्स हैं हमें और कौन से जीन कब मैनिफेस्ट होंगे ये हमको पता नहीं, राइट? जैसे आपको हार्ट अटैक आता है तो क्या पूछ के आता है? क्या आपके पास पहले ईमेल आता है? क्या SMS आता है? क्या मैं आज इतने बजे पहुंचने वाला हूं, ऐसा होता है क्या? अचानक आ जाता है ना, खाना खाते खाते आ जाता है, सोने के टाइम आता है, नींद में आ जाता है, सुबह सुबह उठते ही आ जाता है, वॉकिंग करते करते आता है, बात करते करते आ जाता है, नहीं आता है। तो कोई बीमारी कभी भी आती है ना, और इसी WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1977 में एक मीटिंग किया था अल्माटा में, कजाकिस्तान में एक सिटी है अल्मेटी, अभी उसको अल्मेटी कहते, पहले अल्माटा कहते थे। तो वहां 200 देशों के हेल्थ प्लानर्स इकट्ठे हुए, हेल्थ सेक्रेटरीज और हेल्थ मिनिस्टर्स इकट्ठे हुए, और उन्होंने एक बड़ा अच्छा प्लान किया कि 2000 तक सबको हम हेल्दी बनाएंगे, एटलीस्ट सबको हम सोशली और इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हेल्थ देंगे। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? हम हेल्दी हो गए क्या? हेल्दी हो गए। 2015 में एक सर्वे हुआ भारत में, चार मेजर सिटीज हैं भारत में, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता एंड चेन्नई। तो इन चारों स्टेट्स में लगभग जो 18 साल 21 साल से ऊपर के एडल्ट्स थे उनका एक सर्वे करके दिखा गया, उनके बकायदा ECG भी किए गए, ब्लड प्रेशर, शुगर और सब टेस्ट किए गए, एक फॉर्म भरा गया पूरा, उसके बेस पे सर्वे के रिजल्ट हैं 2015 के, आज से लगभग 4 साल पहले के हैं। 100 में से 30 लोगों को हाई ब्लड प्रेशर था, मतलब आज हम सब बैठे हैं जो, अगर आपका सबका BP चेक करें, आपको शायद कईयों को नहीं पता होगा कि तो आप में से भी 30% लोगों को, हर तीसरे आदमी को हाई ब्लड प्रेशर होगा, राइट? हार्ट डिजीज 100 में से 14 लोगों को थी उस समय, अभी तो और बढ़ गई होगी, ECG करके देखा गया। डायबिटीज 100 में से 10 लोगों को थी, 40% लोग ओवरवेट या ओबीज थे, 10% लोगों को सांस की तकलीफ थी, 35% लोगों को एसिडिटी की बीमारी थी, जिसको आजकल हम GERD कहते हैं, बहुत कॉमन है, 20% लोगों को हड्डियों की तकलीफें थी, स्पेशली जो हमारी बहनें माताएं हैं 50 साल के ऊपर मेनोपॉज के बाद, 50% लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस होता है, 50%, और जैसे उम्र बढ़ती है और ज्यादा होता जाता है। स्किन प्रॉब्लम 10% लोगों को है, आंखों की और नाक कान गले की प्रॉब्लम 10% लोगों को है, कैंसर 5% 100 में से 5 लोगों को है, माइग्रेन है, हेडेक और टेंशन हेडेक 10% लोगों को है, कोई ना कोई इन्फेक्शन 10% लोगों को है, हार्मोनल प्रॉब्लम जैसे थायराइड की, जैसे प्रॉब्लम हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म और भी कई सारी प्रॉब्लम हार्मोन्स की होती है, वो 5% लोगों को है। अगर आप सिर्फ इन्हीं बीमारी को करें, हमारे पास हम तो 3000 पेज की किताबें होती हैं हमारी, ना जाने कितनी सारी बुक्स हम पढ़ते हैं, है ना, कितनी सारी हमारी टेक्स्ट बुक्स होती हैं MD में, तो इन्हीं को सिर्फ हम काउंट कर लें तो 100 लोगों को 200 बीमारियां हैं। अगर आप अपने अंदर देखेंगे तो आपको भी दो दो बीमारी तो मिल जाएंगी बड़े आराम से, सभी के पास दो दो हैं, किसी का कम तो नहीं, ज्यादा भी किसको 3-4-5 भी होंगे ना, मतलब 2 से ज्यादा, वो भी 4-5 भी होती है किसी को 8-10 भी होती है ना, 2 तो सबके पास है, एवरेज है ना। तो हेल्थ फॉर ऑल बाय 2080 हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो आज इतनी मॉडर्न साइंस एडवांस हो गई है, इतने डॉक्टर्स बढ़ गए, इतनी एडवांसमेंट, इतने मेडिकल कॉलेजेस बन गए, इतने हॉस्पिटल्स बन गए, कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स बन गए, तो हेल्थ क्यों नहीं ठीक हो रही लोगों की? क्या कारण है? टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक क्या है? स्ट्रेस फ्री, है ना? स्ट्रेस वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व तो नहीं है। देखिए आगे बढ़ते, आज मन की हेल्थ कैसी है देखें। एक बहुत बड़ा कारण हमारी बीमारी का क्या? टाइप ए बिहेवियर है। टाइप ए बिहेवियर क्या होता है? टाइप ए बिहेवियर इज वन बिहेवियर वेयर वन फील्स प्रेशर ऑफ टाइम, प्रेशर ऑफ वर्क, प्रेशर ऑफ परफेक्शन, ऑलवेज कॉम्पिटिटिव, एग्रेसिव, कंपैरिजन, कंपटीशन। आज हम में से लगभग 80% लोग ऐसे हैं, इसको टाइप ए बिहेवियर कहते हैं। और ऐसे लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा, एसिडिटी, हेडेक, हार्ट अटैक्स 3 गुना ज्यादा होते हैं। ठीक है, हम बहुत इसके बारे में, अपने बारे में प्राइड, हमें प्राइड होता है, हम बहुत पंक्चुअल हैं, हम बहुत परफेक्शनिस्ट हैं, हम हर काम एक्यूरेट करते हैं। But that is the most important cause of problems, right? Type A behavior is one of the stress, right? आज इसमें सब पीड़ित हैं। फिर cynicism, दोष दृष्टि, दूसरों में दोष दिखाई देना। हमारे हमें क्या सबके अंदर दोष दिखाई देते हैं? एक पति को अपनी पत्नी में दोष दिखाई देते हैं, पत्नी को पति में दोष दिखाई देते हैं। शादी के पहले नहीं दिखाई देते, शादी के पहले गुण दिखाई देते हैं, शादी होने के बाद 1 महीने बाद ही क्या दिखाई देना शुरू हो जाता है? वही आदमी है, वही लड़की है ना, एकदम बदल जाता है? नहीं बदल जाता, सभी अनुभवी हो ना आप, सभी एक्सपीरियंस हो ना, नहीं तो दोष दिखाई देने, सिनिकल हो जाते हैं ना, और हॉस्टिलिटी बढ़ती जाती है, रिवेंजफुल बिहेवियर, लेजीनेस, फियर। फियर शब्द से बीमारी शब्द आया। बीमारी शब्द को हिंदी में देखें तो बी मीन्स फियर, मारी मीन्स कॉन्स्टेंसी ऑफ, तो बीमारी शब्द से ही फियर, इस फियर शब्द से ही बीमारी शब्द आया। तो अगर हमारे अंदर फियर बना है तो हमारा जो हार्मोन ऑर्केस्ट्रा है वो सारा बिगड़ जाता है, उससे बीमारियां शुरू होती हैं। फिर ईगो, अटैचमेंट, ग्रीड, खाली पैसे का लोभ नहीं, नाम मान शान का लोभ उससे ज्यादा है आजकल लोगों को, उसके लिए पैसे भी खर्च करते हैं। लस्ट, एंजाइटी, चिंता सबको रहती है नहीं, फियर सबको है। एंगर, हम में से कोई गुस्सा होना नहीं चाहता है, किंतु गुस्सा, कोई ऐसा गुस्सा जो नहीं हुआ हाथ उठाओ, जो पिछले 1 महीने में एक बार भी गुस्सा नहीं हुआ हाथ उठाओ, सभी गुस्सा। क्या गुस्से से हमारा कुछ काम बनता है क्या? एक बार हम गुस्सा करते हैं ना तो 3 दिन तक हमारा हार्ट ठीक से खून पंप नहीं कर पाता, 3 दिन तक हम ठीक से सोच नहीं पाते हैं, तीन दिन तक जो है हमारी किडनी खून साफ ढंग से नहीं कर पाती, 3 दिन तक हमारा खाना अच्छे से हजम नहीं होता है। पर गुस्सा करना तो बहुत जरूरी है, जरूरी है, गुजारा नहीं कि उसके कारण जीना मुश्किल हो गया है, ऐसा नहीं। गुस्से कारण हमारा भी जीना मुश्किल हो गया, दूसरों का जीना भी मुश्किल हो गया। सबसे बड़ी यही स्ट्रेस है सबकी, सब जो मैंने अभी बताई ना, टाइप ए बिहेवियर, सिनिसिज्म, हॉस्टिलिटी, लेजीनेस, फियर, ईगो, अटैचमेंट, लस्ट, ग्रीड, एंजाइटी, एंगर, फिर डिप्रेशन। आज जो सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें से 90% जो जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है, यूएस है, यहां लगभग 25% लोगों को डिप्रेशन है। अभी हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहां भी देखा तो अच्छी एफ्लुएंट कंट्री है बहुत, सिर्फ 2.5 करोड़ लोग रहते हैं, हमसे 3 गुना बड़ा है पूरा ऑस्ट्रेलिया हमारे देश से, और इतना ही एफ्लुएंट है, वहां पर हर चीजें हैं, किंतु हर चौथे आदमी को सिग्निफिकेंट डिप्रेशन है। हमारे भारत में भी लगभग 10 से हमारी जो यंग पॉपुलेशन 20% डिप्रेशन है, एडल्ट्स में आकर के लगभग 10 से 15% डिप्रेशन है। 10% लोग एवरेज दवाइयां खाते हैं, इसी कारण सुसाइडल रेट बढ़ता जा रहा है। मैं आपको स्ट्रेस पे बात करने से पहले मैं आपको स्ट्रेस की पिक्चर दिखा रहा हूं समाज में क्या है। तो स्ट्रेस, ये सब मैंने फिजिकल डिजीज बताई, ये भी स्ट्रेस के कारण है, ये भी सब स्ट्रेस है। और इंसोम्निया, नींद नहीं आती है, एयर कंडीशन रूम है, ढलने वाला बेड है तो भी उस पर नींद नहीं आती है ना, 100 में से 10% लोग गोली खा के भी नहीं सो पाते ढंग से। तो ये आज की हालत है मन की स्थिति। तो मन की भी 6 बीमारियां एवरेज सबको मिली हुई है, और ये सोशल हेल्थ है ना, हेट्रेड, थेफ्ट, जेलसी, डेकोइटिस, कॉम्पिटिटिवनेस है ना, रेप्स, मर्डर्स, ये आज की सामाजिक हेल्थ है। स्पिरिचुअल हेल्थ, आइडेंटिटी क्राइसिस, आज सब जगह आइडेंटिटी क्राइसिस है। कोई किसी से संतुष्ट है क्या किसी से? मां बाप बच्चों से संतुष्ट है? बच्चे मां बाप से संतुष्ट है? कोई पति अपनी पत्नी से संतुष्ट है? कोई पत्नी अपने पति से संतुष्ट है? एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से संतुष्ट है? एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से संतुष्ट है क्या? व्हाट इज द रीजन? स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं है, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। एक्सपेक्टेशन हम रख नहीं सकते हैं, एक्चुअली हमको एक्सेप्ट करना होता है एज इट इज। वी हैव टू एक्सेप्ट पीपल एज दे आर, सिचुएशंस एज दे आर, टू लिव हैप्पीली, टू लिव पीसफुली, टू हैव लवफुल रिलेशनशिप्स। कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, टेररिज्म, टेररिज्म का कारण क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ टेररिज्म? क्या कमांडोज रख करके हम ठीक रख सकते हैं सिचुएशंस को? नहीं रख सकते ना। इसके लिए स्पिरिचुअल एजुकेशन स्कूल लेवल पे चाहिए, ताकि हम अपने स्कूल लेवल्स पे, अगर कॉलेज के लेवल पे स्पिरिचुअल एजुकेशन बच्चों को दें और बीइंग के बारे बताएं, ह्यूमन बीइंग, वी आर बीइंग्स विद द ह्यूमन बॉडी, और हमारी बाई नेचर वी आर पीसफुल, लवफुल, हैप्पी। अगर हम सब समझ जाएं, एंड व्हाट इज पीस, व्हाट इज लव, व्हाट इज हैप्पीनेस, उसको समझ जाएं, तो आई थिंक दैट इज द ओनली सॉल्यूशन टू बी टेररिज्म फ्री। तो ये जो है आज की समस्याएं हैं, जो हमें स्ट्रेस की जब हम बात करने जा रहे हैं तो इसको हमें समझना चाहिए। फिर हैप्पीनेस, हमने देखा नो वन इज हेल्दी इन दिस वर्ल्ड, राइट? तो हैप्पीनेस की डेफिनेशन क्या है? कि इज लाफ्टर हैप्पीनेस? यस, हंसना क्या खुशी है? क्या समझते हैं? हाँ जी, क्या करें, कॉज करता है। हैप्पीनेस जो है कि बाहर की चीज नहीं है। आपने रामायण सीरियल देखा? रामायण में हंसता कौन रहा और मुस्कुराता कौन रहा? रावण सारा टाइम हंसता रहा, और राम एक बार भी हंसा क्या? अब आप सोच सकते हो व्हाट इज हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस एक अंदर की बात है। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड डेफिनेशन क्या है हैप्पीनेस की? हैप्पीनेस इज एन इनर स्टेट ऑफ बीइंग एंड इट कम्स फ्रॉम इनर सेटिस्फेक्शन एंड कंटेंटमेंट। ये अंदर की बात है, तब आती है जब आप अंदर से संतुष्ट होते हैं तो, राइट? इज एनी वन हैप्पी इन दिस वर्ल्ड? क्या इस दुनिया में कोई खुश है? आप में से कोई खुश है? क्योंकि हैप्पीनेस आती कहां से है? हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम प्योरिटी ऑफ माइंड इंटेलेक्ट। अगर आपका मन और बुद्धि शुद्ध है ना, पवित्र है, तो ही आप खुश रह सकते हैं। अगर मन में कोई गंदगी है, बुद्धि में कोई गंदगी है, इम्प्योर थॉट्स चल रहे हैं, तो आप खुश नहीं हो सकते, राइट? अगर आप पीसफुल है तभी आप खुश रह सकते हैं। अगर आप पीसलेस है, हाउ यू कैन बी हैप्पी, राइट? ट्रूथफुलनेस, अगर आप ट्रूथफुल है तभी खुश रह सकते हैं। अगर आप ट्रूथफुल नहीं, खुश कैसे रहेंगे? अगर आपके मन में फियर है, हाउ कैन यू बी हैप्पी? तो फियरलेसनेस इज अ मस्ट, पावर ऑफ टॉलरेंस। अगर आपके अंदर सहन शक्ति है तो खुश रह सकते हैं। आज का इंसान गुब्बारे की तरह से है, हवा भरते जाओ फूलता जाता है, फूल के इतना बड़ा हो जाता है, राइट? और एक आदमी सुई लेकर के आए, निडल लेकर आए, उसको लगा दे तो क्या होता है? इतना सब जाता है। आज का इंसान भी उसको महिमा मिलती रहे, सक्सेस मिलती रहे, फूल के गुब्बारे की तरह बड़ा हो जाता है, समझता मेरे जैसा कोई नहीं है। अचानक कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई क्रिटिसाइज कर दे, तो ऐसा हो, छोटा सा हो जाता है। तो अगर आप सदा खुश रहना चाहते हैं, यू हैव टू हैव पावर ऑफ टॉलरेंस। बिना सहनशीलता के आप कभी भी सदा खुश नहीं रह सकते। अल्पकाल के लिए थोड़े समय खुश रह सकते हैं, थोड़ा सा सुख, इतना सारा दुख। तो ये हमें समझने की, इजी नेचर, सरल स्वभाव वाला व्यक्ति खुश रह सकता है। हैप्पीनेस मीन्स स्ट्रेस फ्री, राइट? इफ यू वॉन्ट टू बी ऑलवेज हैप्पी, इफ यू वॉन्ट टू ऑलवेज स्ट्रेस फ्री, देन यू हैव टू हैव दीज क्वालिटीज। स्वीटनेस, आपको मिठास, मधुरता होनी चाहिए आपके बारे में। अगर कड़वा बोलते हैं, क्रोध करते हैं, तो आपको भी खुश नहीं रह पाएंगे। लार्ज हार्टेडनेस, कौन सी लार्ज, बड़ा दिल, कौन सा बड़ा दिल? ये दिल बड़ा हो गया तो सांस ही नहीं आएगा आपको, राइट? कौन सा दिल बड़ा? उदारता मींस दूसरों की गलतियों को माफ कर देना। गलतियां हम भी करते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे लोग हमें माफ कर दें, इग्नोर कर दें, तो हमें भी दूसरी गलती को इग्नोर करने की एबिलिटी आनी चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं। अगर छोटी छोटी दूसरी गलतियों को हम देखते रहेंगे तो हम कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे, राइट। एम्पैथी, कंपैशन, दूसरों को रहम, है ना, रहम करना, दूसरों को, दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझना, उसकी पेन को समझ के उसको हेल्प करना। लव, सच्चा प्यार। सेक्रीफाइस, त्याग। आप कैसे, देने में खुशी, लेने में खुशी, बताइए। लेने में खुशी नहीं होती, दोनों में खुशी है, लेने में भी खुशी है, देने में भी खुशी है। पर लेने में जो खुशी है वो थोड़ी देर के लिए होती है, देने की खुशी लंबा समय चलती है, राइट। और सेटिस्फेक्शन, कंटेंटमेंट, कहते समय से पहले नहीं, भाग्य से ज्यादा नहीं, राइट। तो हमें समझना चाहिए कि हमारे समय, हमें जो मिलना है हमारे समय पर हमें मिलेगा, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा बट समय पर मिलेगा और भाग्य से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो हमें ये, अगर हम ये बातें थोड़ी सी टिप्स समझ जाए तो हम इस पे, हम हैप्पीनेस को, मतलब हैप्पीनेस के लिए जरूरी, मतलब या स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए बहुत जरूरी ये बातें। और आज 95% अधिक बीमारियां स्ट्रेस से रिलेटेड है, तनाव से रिलेटेड है और साइकोसोमेटिक है। अर्थात साइकी मीन्स माइंड, सोमा मीन्स बॉडी। पहले मन में आती है, मन में डिस ईज पैदा होती है, फिर बॉडी में आती है डिसीज, राइट। डिसीज मीन्स लॉस ऑफ ईज। पहले मन में शांति खत्म होती है, फिर बॉडी में शांति खत्म होती है, फिजिकल डिसीज होती है। हमने इस पे काम किया, इस पे हमने पिछले अप्रैल 95 में, मैंने एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट में रहते हुए एक प्रोग्राम बनाया कि हार्ट कैन बी रिग्रेस कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, कैन बी ओपन देयर ब्लॉक्स। तो हमने मेन चीज में स्ट्रेस, हमने देखा स्ट्रेस लो, जब लोगों को, जो स्ट्रेस वाले लोग हैं उनको ज्यादा, जैसे इनको जो टाइप ए नेचर के लोग हैं वो 3 गुना अधिक हार्ट अटैक्स होते हैं, जो गुस्सा करते हैं उनको 3.5 गुना अधिक हार्ट अटैक्स होते हैं, और जो उदास हो जाते हैं उनको 5 गुना अधिक हार्ट अटैक्स होते हैं, जो हॉस्टाइल होते हैं उनको ज्यादा हार्ट अटैक्स होते हैं, जो अपने मन की बातें शेयर नहीं कर पाते, टेंशन को शेयर नहीं कर पाते, 3 गुना अधिक हार्ट अटैक्स होते हैं। तो मेन कॉज ऑफ हार्ट डिजीज इज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को मैनेज करें, डेली एक्सरसाइज करें, और हमारी शुद्ध सात्विक डाइट हो, उसको लेकर के हमने DRDO से कोलैबोरेशन किया, डॉक्टर कलाम साहब के साथ मिलकर, और मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद 3 इंस्टीट्यूट को कोलैबोरेशन किया इनसे, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इसको स्पॉन्सर किया। तो ये रिसर्च हमने 2011 में पब्लिश की और माउंट आबू ओपन हार्ट ट्रायल के नाम से पब्लिश हुई, और ये रिसर्च हमारी, मतलब जो वर्ल्ड की टॉप 20 रिसर्चेस कार्डियोलॉजी के फील्ड में रही, उसमें नंबर वन रही लगभग 2.5 साल। जुलाई 2013 में नंबर वन आई थी टॉप 20 रिसर्चेस में, और भारत की स्टडी, और नवंबर 2015 तक नंबर वन पे रही। तो भारत की ऐसी स्टडी मतलब बहुत रेयर है, मैं समझता हूँ एक स्टडी और है जो 2.5 साल लगभग नंबर वन पे रही ना? तो ये एक रिसर्च वो है जिसमें जो यहाँ पे की गई, यहाँ रह के की गई और वर्ल्ड में नंबर वन पे रही। भारत ने दो ही चीज, अब जब इसको हम आजकल जो हमारी कॉन्फ्रेंसेज में डिस्कस किया जाता है, भारत ने दो, भारत सारी चीजें विश्व से लेता है, सारी मेडिसिन विश्व में बनती हैं और विदेशों में बनती हैं, उनकी रिसर्च वहां होती है। भारत ने सर दो ही चीजें विश्व को दी है, एक तो रिमेटिक फीवर का इलाज, रिमेटिक फीवर होता है ना जिसमें हार्ट के वाल्व खराब हो जाते हैं, उसमें डॉक्टर पद्मावती ने बताया कि पेनिसिलिन उसकी दिल्ली देनी चाहिए, और उसका मेन इलाज भारत ने ही दिया सारे विश्व को। और दूसरा ये जो है ना कि हार्ट अटैक को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं या आपके ब्लॉक्स कैसे खोल सकते हैं, वो सारे वर्ल्ड में ये दो ही चीज हमने भारत ने विश्व को दी है, ये भारत की देन है सारे विश्व को। और ये फिर एक रिसर्च पब्लिश, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने एक साइंटिफिक स्टेटमेंट पब्लिश किया, मेडिटेशन एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क रिडक्शन, कि हार्ट अटैक को बचाने के सारे जो कारण होते हैं उनको, उनसे रिस्क, उनका रिस्क कैसे कम कर सकते हैं मेडिटेशन के द्वारा। तो उन्होंने इस बात पर, ये साइंटिफिक स्टेटमेंट था उनका जो 2017 में पब्लिश हुआ, उन्होंने इस रिसर्च माउंट आबू ओपन हार्ट ट्रायल को डॉक्यूमेंट किया कि, और डी नॉर्निश को डॉक्यूमेंट किया कि ये दो चीजें, दो रिसर्च ऐसे इसमें बड़ा प्रूव हुआ है कि मेडिटेशन इज एन इफेक्टिव मेथड टू डील विद स्ट्रेस, हार्ट अटैक्स, डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड डी एडिक्शन। तो मतलब इस तरह की बातें उन्होंने लिखी है। तो ये सारे विश्व में एक तरह का ये जो है पब्लिश, एक तरह का राजयोगा मेडिटेशन द्वारा हम इस बीमारी से मुक्ति, स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज से मुक्ति पा सकते हैं, उन्होंने इस बात को सारे विश्व में डॉक्यूमेंट किया। अब हम आते हैं स्ट्रेस के ऊपर। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस क्या चीज है? स्ट्रेस क्या है, आप क्या समझते हैं? व्हाट इज स्ट्रेस? कौन बताएंगे? आप सभी इंटेलेक्चुअल्स हैं, बताएं। Yes, and ठीक कहा आपने, और कुछ? When expectations are not met. और क्या कहा? Outside sources. हाँ जी. When things do not go according to our wishes. Right, okay. मैं आपको एक बहुत ही ओवरव्यू देता हूं स्ट्रेस का, व्हाट इज स्ट्रेस है ना, आप सब उससे एग्री भी करेंगे और बहुत सिंपल मेथड आपको मिल जाएगा कि उससे सॉल्यूशन लेने का. स्ट्रेस इज अ रिएक्शन टू चेंज. स्ट्रेस इज अ रिएक्शन टू चेंज. जब हम कोई भी हमारे अंदर खुद के अंदर या बाहर कुछ चेंज देखते हैं, परिवर्तन देखते हैं, तो अगर हम उसको रिएक्ट करते हैं तो स्ट्रेस है. जैसे हमें अगर हम अभी बाहर निकले, हमारे पास छाता नहीं है और जोर से बरसात हो रही है और हमने रिएक्शन कर दिया, क्या करें, हम तो भीग जाएंगे, तो क्या होगा? स्ट्रेस हो जाएगी ना. आप अपने घर में आते हैं, आपको अचानक हार्ट में दर्द हो जाए, यहां दर्द हो जाए, तो अगर आप रिएक्शन करना शुरू कर दें, अरे मुझे तो हार्ट अटैक हो गया, मैं तो मरने वाला हूं, तो क्या होगा? तनाव हो जाएगा ना. नहीं होगा. मतलब आपको कभी छाती में दर्द नहीं हुआ? नहीं, बट एंजाइटी इज ऑल्सो स्ट्रेस ना. मैंने जो सारी बताई ना, एंजाइटी टाइप है, बिहेवियर एंजाइटी, एंगर, डिप्रेशन, ये सब के सब स्ट्रेस तो है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस है. तो जब भी हम कोई चीज को रिएक्ट करते हैं, सपोज आप अपने घर में जाते हैं, आपकी वाइफ आपको एक गिलास पानी जब आ जाते हैं तो आपको, मतलब आप भी उसको एक्नॉलेज करते हैं कि आप आ गए घर पे ना, आपको कुछ एक कप टी चाय बना के देती है, कुछ आपको एटलीस्ट चेहरे द्वारा वेलकम करती है. तो आप आज आप देखते हैं कि आज उसने आज आपको आपकी तरफ बात ही नहीं कर रही है, मुंह परली तरफ सोई हुई है ना. और क्या होगा अगर आप रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा? स्ट्रेस होगा ना. हालांकि आप एक एक्शन करें, एक्शन लेना मना, एक्शन अगर आप एक्शन लें कि हम नहीं, वो पूछे क्या बात है, आज तबीयत ठीक नहीं है, यू आर नॉट वेल, हो सकता है कोई बैड न्यूज आई हो ना, कोई घर कोई उसकी तबीयत ठीक नहीं हो, हेडेक हो गया हो या कुछ और प्रॉब्लम हो गई इश्यू में, अगर आप एक्शन करें, एक्शन मीन्स आप सही ठंडे दिमाग से उसको देखें, तो आपको स्ट्रेस नहीं होगी. अदरवाइज आप तो फिर क्या स्ट्रेस हो जाएगी ना, पूरे घर में स्ट्रेस हो जाएगी ना. राइट, ऐसे अपने ऑफिस में आते हैं, आपका ऑफिस में आपका स्टाफ आपको विश करता है ना, आपका पीएन, आपका सेक्रेटरी आपको विश करता है, और आज उसने आपको विश नहीं किया, इग्नोर कर दिया, तो आप क्या होगा? डेली करता, आज नहीं किया तो क्या होगा? स्ट्रेस हो जाएगी ना आपको. नहीं, मतलब जो चीज रोज होती है वो नहीं हुई आज, तो आपको स्ट्रेस, मतलब दिस इज चेंज ना. एंड लॉ ऑफ लाइफ क्या है? लॉ ऑफ लाइफ चेंज. सो टुडे लॉ ऑफ लाइफ इज स्ट्रेस. जीवन हर समय बदलता है, वो चीज एक जैसी सदा नहीं रहती है, कभी नहीं रहती है, बदलती रहती है. हमारी बॉडी में भी होता रहता है, हमारी बॉडी में कभी गैस बन जाती है, कभी कुछ होता है, पैरों में दर्द हो जाता, कुछ हो जाता है, अचानक से कुछ हो जाता है. तो अगर हम रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? हमारे अंदर भी होता है, बाहर भी होता है ना, और घर में भी होता है, बाहर भी होता है, वो चेंज हो रहा है. और हम उससे अगर रिएक्शन करने की हमें आदत है तो हम सदा स्ट्रेस में रहेंगे. इसकी बजाय हम एक्शन करें तो क्या होगा? हमें कभी भी स्ट्रेस नहीं होगी. राइट, सो टुडे लॉ ऑफ लाइफ इज स्ट्रेस. एवरीवन इन दिस यूनिवर्स इज इन स्ट्रेस. इस सारे विश्व में हर आदमी स्ट्रेस में है. राइट, क्या समझते हैं? स्ट्रेस में है कि नहीं है? यूएस का प्रेसिडेंट स्ट्रेस में है? हा? भारत का प्राइम मिनिस्टर स्ट्रेस में है? पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर स्ट्रेस में है? नहीं. बच्चे स्ट्रेस में है? नहीं. सभी स्ट्रेस में ना. मुकेश अंबानी स्ट्रेस में है? नहीं. नहीं, तो हम सभी स्ट्रेस में है. मतलब जिसके पास पैसा है वो भी स्ट्रेस में है, जिसके पास नहीं है वो भी स्ट्रेस में है, गरीब भी स्ट्रेस में है और अमीर भी स्ट्रेस में है, जवान भी, बच्चा भी स्ट्रेस में है, बूढ़ा भी स्ट्रेस में है. कारण क्या है? हम सब रिएक्शन कर रहे हैं, अब क्या करें? क्या फॉर्मूला क्या है स्ट्रेस मैनेजमेंट का? स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर्स डिवाइडेड बाय कोपिंग एबिलिटी और इनर स्ट्रेंथ. जब ये रेशियो एक से अधिक होता है तो हमें स्ट्रेस फील होती है. प्रेशर्स कैन बी इंटरनल, हमारे अंदर के प्रेशर्स हो सकते हैं, जैसे मेरे अपने मन के प्रेशर्स हो सकते हैं, मेरी नेचर जल्दीबाजी की पड़ गई, प्रेशर में रहने की टाइप ए बिहेवियर बन गया, एंजाइटी बन गई, एंगर, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हो गया हूं, मैं सेंसिटिव हो गया, इमोशनल हो गया हूं, या थोड़ा डिप्रेशन मुझे हो गया, मुझे नींद नहीं आती है, ये मेरी अपनी नेचर बन गई ना, राइट। मेरी नेचर, मेरी 11 साल की उम्र तक मेरे हाथ में नहीं है, मेरे माता पिता से, भाई बहनों से, टीचर से, दोस्तों से, 11 साल की उम्र तक जिससे इस बात में इंप्रेस हो, मेरे अंदर पैसिवली रिकॉर्ड हो गई है। उसके बाद प्यूबर्टी आई, हार्मोन्स बदले, अगर मैंने फिर भी ये समझ के परिवर्तन नहीं किया तो फिर वो चीज परमानेंट मोहर लग गई है, राइट। अब नेचर तो मेरी बन गई, अब ये जो है मेरे अंदर का प्रेशर है, एक दिन में तो बदलेगा नहीं, हालांकि मैं कोशिश करूं तो बदल सकता है, बट इट मे नॉट, इट विल नॉट चेंज इन अ डे कि आज मैं टाइप ए हूं कल टाइप बी बन जाऊं, ऐसा तो नहीं, सुबह टाइप ए हूं शाम को टाइप बी बन जाऊं, इट इज नॉट पॉसिबल। मेरे को बहुत एंजाइटी होती है, मेरे को अंधेरे में डर लगता है, अचानक मेरा ऐसा हो कि मेरा आज अंधेरे में डर लगना बंद हो जाए, आज सामने से कोई गाली दे रहा है मैं गुस्सा आता है कि तो, ऐसा तो नहीं मुझे आज अचानक आज से गुस्सा आना बंद हो जाए, है ना, ऐसा है क्या? टाइम लगेगा, आई कैन चेंज दैट बट इट विल टेक सम टाइम, राइट। तो प्रेशर, इंटरनल प्रेशर है मेरा, मेरी बॉडी में ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, मुझे घुटने में खराबी है, तो ये भी एक प्रेशर है, एक दिन तो ठीक नहीं होगा। सिमिलरली मेरी फैमिली, एक्सटर्नल में फैमिली आ गई, मेरी पत्नी, मेरे पति या बच्चे या माता पिता, भाई बहन आया घर में, आती है या जो भी काम मेरे घर में जो भी चीजें हैं वहां भी कुछ एकदम बदलेगा तो नहीं, बदल सकता है ना, प्रेशर्स तो आएंगे। मैं वर्क प्लेस पे जाता हूं, वहां भी कुछ ऐसी चीजें हैं, जो मेरा बॉस है या नीचे लोग हैं या मैं बॉस हूं, नीचे मेरे एम्प्लॉयज हैं, मेरे स्टाफ है, मेरे कुलीग्स हैं, वो एक दिन में तो बदल नहीं जाएंगे, नहीं। आज फाइनेंशियल प्रेशर है, एक दिन में तो नहीं ठीक होने वाला है, तो ये प्रेशर मे नॉट बी मॉडिफाइबल, तो मेरे हाथ में क्या चीज है बताइए, मेरे हाथ में क्या चीज है? इनर स्ट्रेंथ, कोपिंग एबिलिटी, और इनर स्ट्रेंथ में कितनी बढ़ा सकता हूं, कितनी बढ़ा सकता हूं बताइए। 1970s में मुझे याद है, हम स्कूल में पढ़ते थे, हमारे बहुत प्रेशर्स थे, हम लोग 7 भाई बहन थे, उस जनरेशन में पता ही होगा, आपके भी जनरेशन में कुछ पता होगा आपको, कितने कितने भाई बहन होते थे, 5, 7, 8, 10, 12, नहीं ऐसे ही होते थे ना। अभी तो हमारे तो एक दो बच्चे भी मुश्किल में संभाल पाते हैं हम लोग, तो तब कितने कितने और कितनी कितनी प्रॉब्लम्स थी, तेल नहीं मिलता था, कोला नहीं मिलता था, राशन नहीं मिलता था, हर एक की लाइन में बच्चे, एक एक बच्चे, जिसके बच्चे ज्यादा है उसको ज्यादा लाइन में लगा सकते हैं, ऐसा था ना। याद है, पुराने लोगों को याद होगा, नहीं तो मतलब वो टाइम ऐसा था ना, तो तब भी आम आदमी कितना स्ट्रेस फ्री था, कभी उनसे बात करो ना तो स्ट्रेस फील नहीं होती थी, इजी रहते थे, और आज सब कुछ, और ट्रंक कॉल करनी तो कितना मुश्किल होता था, ट्रंक कॉल करना, मोबाइल था क्या लोगों के पास, कितने दो दो घंटे हम खड़े रहते थे वहां बात करने कहीं पे, तो बात दो दो घंटे पहले हमें कहला के खड़ा होना पड़ता था, अच्छा अभी ट्रंक कॉल लगा के देंगे एक्सचेंज वाले, है ना, और अभी तो आप कहीं भी बात कर सकते हो, सारी फैसिलिटीज आपके पास है, सारे शहर में एक डॉक्टर होता था एमबीबीएस, मुश्किल से हकीम ही होते थे थोड़े, तो अभी तो कितने डॉक्टर्स, कितने हॉस्पिटल्स, कितनी फैसिलिटीज, तो अभी कितनी फैसिलिटीज, आप घर में बैठे चीजें आपके घर में आ जाती है, तब तो हर चीज में जानी मुश्किल कितनी होती थी, तो तब प्रेशर ज्यादा थे, इनर स्ट्रेंथ ज्यादा, प्रेशर बहुत ज्यादा थे कि तो इनर स्ट्रेंथ उससे भी ज्यादा थी। आज प्रेशर बहुत कम है, प्रेशर बहुत कम है आज कि तो इनर स्ट्रेंथ कितनी है, इतनी से भी नहीं, कोपिंग एबिलिटी जरा भी नहीं है। हमने अपने पेरेंट्स को भी लड़ते हुए नहीं देखा, अपने माता पिता को कभी आपने लड़ते देखा क्या, जो 60 साल वाले उनसे पूछ रहा हूं, कभी लड़ते नहीं देखा होगा, और आज के माता पिता, आज के बच्चे अपने माता पिता को रोज ही लड़ते देखते हैं, वही वो होते हैं, बफर जोन होते हैं, नहीं वही छुड़ाते हैं दोनों को लड़ने से, नहीं मम्मी आप चुप हो जाओ, पापा आप चुप हो जाओ ना, नहीं तो ये जो पावर है, क्या हो गया, इसको भी प्रेशर हो गया। देखना भैया एक मिनट आके, ये भी नाराज हो गया, ये हैंग हो गया, इसको भी स्ट्रेस हो गया लगता, ये हैंग हो गया ना, हाँ बस ठीक ठीक हाँ जी। देखिए एक तो होता है, फिर एक अब स्ट्रेस में भी दो तरह के तीन तरह के स्ट्रेस कैसे दो तरह के स्ट्रेस एक यू स्ट्रेस है विच इज अ फॉर्म ऑफ ए चैलेंज राइट व्हेन इनर स्ट्रेंथ इज मोर देन द प्रेशर व्हेन आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है ज्यादा है क्या आप ज्यादा मतलब इसको चीज को आपको एक्सपर्ट है आप जानते हैं इसको करना हाउ टू हैंडल तो आपके लिए वो यू स्ट्रेस है चैलेंज है राइट जैसे एक हार्ट मुझे मेरे लिए हार्ट अटैक के पेशेंट को संभालना बहुत ईजी है राइट जिसको नहीं संभालना आता उसके डॉक्टर के हाथ पैर अपने आप ही फूल जाते हैं अगर मेरे पास दूसरा को ब्रेन का पेशेंट कुछ और चीज का पेशेंट है मुझे मुश्किल होगा लगेगा ना जिस चीज के जो एक्सपर्ट है उनको वो चीज संभालना इजी लगती है और जिसके जिसको नहीं आती वो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आप बारिश हो रही है आपके हाथ में छाता है तो आपके लिए क्या है वो चैलेंज है बरसात में चलना आपको मजा आएगा राइट यू विल एंजॉय इट राइट ऐसे ही अगर आपको पास कमरे में एसी लगा हुआ है गर्मी भले ही ज्यादा है तो स्टिल यू विल रिलिश गर्मी को भी रिलिश कर लेंगे ना अच्छा लगेगा तो और डिस्ट्रेस कहते हैं व्हेन एक्सप्रेशन एक्सीड द इनर स्ट्रेंथ जब आपके पास इनर स्ट्रेंथ कम है आपके प्रेशर ज्यादा है तो आप डिस्ट्रेस महसूस करते हैं एंड दैट लीड्स टू डिसईज राइट उससे बीमारी पैदा होती है इंटरनल प्रेशर मैंने बताया माइंड में उसे ऑलरेडी मैंने बताया माइंड में हो सकते हैं आपके बॉडी मन में हो सकते हैं शरीर में हो सकते हैं एक्सटर्नल प्रेशर फैमिली में हो सकते हैं सोसाइटी वर्क प्लेस सिटी में हो सकते हैं ट्रैफिक पोल्यूशन ट्रैफिक हो सकता है फाइनेंशियल पॉलिटिकल एनवायरमेंटल लीगल टेररिज्म नेशनल तो ये डिफरेंट एक्सटर्नल प्रेशर्स हो सकते हैं तो व्हाट इज द सॉल्यूशन सॉल्यूशन क्या है क्या करें नो मेडिकेशन और सर्जरी इन दिस यूनिवर्स कैन इंप्रूव कोपिंग एबिलिटी आपके समय को दवाई है जिससे आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ जाए कोई दवाई ऐसी खा करके लोग कहते शराब पी के अपनी थोड़ी देर के लिए कर लो ना पर इज इट द सॉल्यूशन इट इज नॉट द सॉल्यूशन आपकी एक्यूटी मेंटल एक्यूटी कम हो जाती है इंटेलेक्चुअल एक्यूटी कम हो जाती है तो वो तो और ही खराब चीज है ना नशा करके तो और ही खराब हो जाते हैं दैट कैन गिव यू दैट कैन गिव यू फॉल्स स्ट्रेंथ ऑफ फॉल्स सेंस ऑफ स्ट्रेंथ बट दैट इज नॉट रियल स्ट्रेंथ That reduces the inner strength. Yes. Only technique to increase coping ability or inner strength is yoga or meditation. ठीक है एक ही चीज है उसको इंप्रूव करने की मेडिटेशन मैंने बताया कि आज प्रॉब्लम सारे संसार में क्यों हो रही है पर इसका सोल्यूशन क्या किसी के पास नहीं है क्योंकि आज आवश्यकता है योग की और मेडिटेशन की ये योग और मेडिटेशन ऑप्शनल नहीं है आज किसी के लिए भी आज सारे विश्व में यूएस हो यूके हो कोई भी देश हो सब जगह इसको वाइडली प्रैक्टिस कर रहे हैं हर जगह इसकी डिमांड बढ़ रही है वाई लोग योग के नाम पर क्या क्या कर रहे हैं है ना व्हाट रियल योग क्या है मेडिटेशन क्या आज उसके हम बात करते हैं व्हाट इज मेडिटेशन सो दैट यू कैन बी स्ट्रेस फ्री अगर आप मेडिटेशन करना सीख जाए योग लगाना सीख जाए तो आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे आपको कभी कुछ भी करते भी तनाव नहीं होगा जैसे यहां के लोगों को हाँ इससे चला जाता है हाँ क्योंकि 70% कोलेस्ट्रॉल आपके मन से ही बनता है लिवर में बनता है मन से बनता है अगर आप खुश रहेंगे अतिंद्रिय सुख की अनुभूति में रहेंगे तो आपका लिवर अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनाएगा बुरा नहीं बनाएगा तो आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाएगा हमारे पास तो हजारों पेशेंट्स हैं जिनके मतलब कोलेस्ट्रॉल और क्या हार्ट की ब्लॉकेज ही खुल गए ना हजारों पेशेंट्स हैं जिनके ब्लॉकेज थे 100% मैं दिखाऊंगा आपको कैल्सीफाइड ब्लॉकेज भी खुल गए कोलेस्ट्रॉल तो नॉर्मल हो ही जाता है ना गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है ट्राइग्लिसराइड कम हो जाता है क्योंकि 70% कोलेस्ट्रॉल लीवर में बन रहा है सर 30% मन में जा रहा है मुंह से जा रहा है वो भी आप क्योंकि खाने में खुशी ढूंढ रहे इसलिए जा रहा है अगर आप खुश पहले रहना सीख जाओ तो फिर आप हेल्दी फूड खाएंगे ना तलावा क्यों खाएंगे पराठा पकौड़ा समोसा क्यों खाएंगे क्योंकि आपका मन खुश नहीं इसलिए वो खाना पसंद करते हो फिर भी बड़ा कोई बात नहीं फिर भी ठीक हो जाएगा मैं आगे बताऊंगा आपको इसके बारे में तो व्हाट इज योग और मेडिटेशन योग मींस कनेक्शन राइट योग मींस कनेक्शन बिटवीन द टू है ना कहते हैं योग माने कनेक्शन जैसे मैंने इसका इसका कनेक्शन यहां इससे इसका पॉइंट यहां लगाया आई कैन ऑपरेट दिस राइट योग मींस कनेक्शन देन कनेक्शन विद व्हाट किससे कनेक्शन करें हम क्वेश्चन आता है किससे कनेक्शन करें कनेक्शन विद द ट्रूथ कनेक्शन विद द ट्रूथ राइट सत्य से हमारा कनेक्शन होना चाहिए अब व्हाट इज द ट्रूथ फिर क्वेश्चन आता है सत्य क्या है सत्य की दो क्वालिटीज होती हैं पहली ट्रूथ इज इटर्नल बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ सत्य जो होता है वो मृत्यु और जन्म और मृत्यु से परे होता है दूसरा ट्रूथ इज अनचेंजेबल इट ऑलवेज रिमेन्स द सेम. तो इंसान में, इंसान का सत्य क्या है? व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग? यस, क्या कह रहे हैं? बर्थ और डेथ. नहीं नहीं, मैंने कहा डेथ, डेथ. व्हाट इज ट्रूथ? ट्रूथ इज बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, एटर्नल. तो इंसान में सत्य क्या है? ह्यूमन बीइंग है ना, ह्यूमन बीइंग शब्द है ना, दो शब्दों से बना है. ह्यूमन, ह्यूमन, ह्यूमन शब्द ह्यूमस से आया है. ह्यूमन शब्द ह्यूमस से आया, उसका लिटरल मीनिंग सॉयल होता है, मिट्टी. ये हमारा आउटर सेल्फ है. ये जो बाहर देख रहे हैं हमारा आउटर, उसमें आप देख सकते हैं ये हमारा आउटर सेल्फ है. और बीइंग जो शब्द है उसका मतलब है लाइफ फोर्स, उसका लिटरल मीनिंग है सोल, SOUL है ना, वो हमारा इनर सेल्फ है. तो सॉयल और सोल में क्या फर्क है बताओ? स्पेलिंग में क्या फर्क है? INU का फर्क है ना. तो जब हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं, सॉयल कॉन्शियस होते हैं, आउटर सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, तो उसमें आइनस और माइनस आ जाती है. आइनस मीन्स, आइनस मीन्स ईगो, और माइनस मीन्स अटैचमेंट. ईगो एंड अटैचमेंट आती है, उससे सारी प्रॉब्लम्स आती है, सारी स्ट्रेस उससे पैदा होती है. और इसकी बजाय अगर आप सोल कॉन्शियस हो जाएं, इनर सेल्फ कॉन्शियस हो जाएं, यू मीन्स यूनिवर्सल, आप क्या बन जाते हैं? वसुदेव कुटुंबकम, सारे विश्व के बारे सोचते हैं. अब मान लीजिए अगर आप ये भूकंप आ जाए यहां पर जोर से, सब कुछ हिलना शुरू हो जाए ऐसे ऐसे, तो क्या होगा? आप में से कितने लोग हैं जो नहीं भागेंगे? जो सोल कॉन्शियस होगा नहीं भागेगा, है ना. वो वहां खड़ा हो जाएगा, कहेगा आराम से, आराम से, आराम से, डरिए नहीं, डरिए नहीं, आराम से, आराम से. तो भागेंगे तो सब एक दूसरे को दबा देंगे ना आप. क्या होता है? क्या अच्छा भूकंप आया तो आप वहां जाके खड़े हो गए? वो ये तो ठीक कुछ नहीं हुआ, वहां वाली दीवार गिर गई तो क्या हुआ? ये तो मतलब ये जब फीलिंग है ना हमारे अंदर, मैं आत्मा हूं तो डर खत्म हो गया, राइट? क्योंकि आत्मा को आत्मा मर नहीं सकती है. ये फीलिंग, आत्मा बर्थ और डेथ से परे है. आत्मा पांचों महीने में गर्भ में प्रवेश करती है. जिस दिन देहांत, देह का अंत होता है ना, देह छोड़ के आत्मा चली जाती है, फिर दूसरा बर्थ लेती है. अगर हम मुझे ये हो जाए कि आई एम अ बीइंग बाय नेचर, आई एम अ बीइंग, तो मैं पीसफुल नेचर, बीइंग की नेचर ही पीस, लव एंड हैप्पीनेस है. तो अगर आप इसको समझ लें, इंसान, ये मॉडर्न कंसेप्ट क्या है ह्यूमन बीइंग और हेल्थ का? ह्यूमन बीइंग इज ए कंटिन्यूम ऑफ स्पिरिचुअल, मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी. इंसान तीन एनर्जी का बना हुआ है, स्पिरिचुअल एनर्जी, आत्मा, मन और बॉडी, और फिजिकल बॉडी. और हेल्थ क्या है? हेल्थ इज ए डायनेमिक प्रोसेस ऑफ हार्मोनी इन फ्लो ऑफ स्पिरिचुअल, मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी. स्पिरिचुअल एनर्जी क्या है? पीस, लव एंड हैप्पीनेस. मेंटल एनर्जी क्या है? टीम, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज. ये हमारे पॉजिटिव होने चाहिए. और अब फिजिकल एनर्जी कहां से आती है? भोजन से. शुद्ध सात्विक भोजन, शुद्ध सात्विक सैर, और प्रॉपर नींद, और प्रॉपर, अगर बीमार है तो प्रॉपर दवाई. फिजिकल एनर्जी वहां से आती है. तो अगर हमारे अंदर ये अटेंशन है तो हम हेल्दी रह सकते हैं. और एक बहुत अच्छी न्यूज है आप लोगों के लिए, सभी अलर्ट है, कोई सो भी रहे हैं? जो सो रहे हैं हाथ उठाओ. कोई नहीं सो रहे? अच्छा, वेरी गुड. क्योंकि ये बात मैं आपको सबके सबके जागने के, जाग के सुनने की बात है कि हमारे शरीर में आत्मा और थोड़ी सी मेमोरी सेल्स, वही कंटिन्यूस है लाइफ से, लाइफ के साथ. 99.9% सेल्स वो जो है सारी सारी बदल रही हैं, तीन महीने से दो साल के अंदर बदल जाती है पूरी. अभी आपको वोट आपने दिया ना, आपको निशान लगा था यहां पर, कहां गया निशान? नाखून निकल गया, पूरी स्किन ही बदल गई है ना, तीन महीने हो गए ना, तो निकल गया ना निशान. तो आपका स्किन बदल रही है, तीन महीने बदल रही है ना स्किन. आप बाल कटवाते हैं, हर महीने बाल कटवाते हैं, दाढ़ी रोज आती है ना, रोज शेव करते हैं, हमारी पूरी स्किन तीन महीने बदल रही है. हार्ट के अंदर की लाइनिंग तीन महीने बदल रही है, पूरा हार्ट दो साल में बदल रहा है, हड्डियां आपकी पूरी दो साल में बदल रही हैं, पूरे अंदर की आंतों की लाइनिंग तीन महीने में बदल रही है, पूरा ब्लड आपका चार महीने बदल जाता है. आपकी जो WBC फाइटिंग, ब्लड को फाइट करने, बीमारी को फाइट करने वाली सेल्स एवरी फोर्थ डे बदल रही है. किस आधार पे? आपकी टीम के आधार पे. टीम माना आपके थॉट्स कैसे, इमोशंस कैसे, एटीट्यूड कैसा है, मेमोरीज कैसी है. मन, टीम माना मन के आधार पे.
अगर आपके मन में हार्ट पेशेंट हूं, 3 महीने बाद वो हार्ट जो बनेगा ना आपका, अंदर की लाइनिंग वही बनेगी जो ब्लॉक वाली बनेगी। अगर आप अपने अंदर से रियलाइज कर लेते मेरी कोई ब्लॉक नहीं है, मेरी सब ब्लॉक निकल गई है, तो 3 महीने में जब आपका हार्ट दोबारा से आर्टरी बनेगी, 3 महीने तक उसी को फिक्स रखिए, 3 महीने के बाद जो आर्टरी आपके अंदर की लाइनिंग बनेगी उसमें कोई ब्लॉक नहीं होगा। आप कैंसर को भी खत्म कर सकते हैं। हमने देखा कि इनको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, लोग ठीक हो जाते, पैनक्रियास पूरा ठीक हो जाता है, जो इंसुलिन 50-50 यूनिट 100 यूनिट इंसुलिन पे, उनकी इंसुलिन खत्म हो जाती है ना, ब्लड प्रेशर नॉर्मल, आज ब्लड प्रेशर बीमारी नहीं है उनको, है ना, हार्ट अटैक आने के बाद मसल्स डेड हो जाती है, हार्ट नया बन जाता है। यस यस, दैट इज व्हाट वी हैव डन। यही मुझे एक्चुअली 1995 में मुझे ऐसा एक क्या बोलते हैं, क्लेयरवॉयंस हुई मॉर्निंग में, और तब उसके बेस पे मैंने डॉक्टर कलाम साहब से शेयर किया, तो उन्होंने कहा नहीं ये प्रोजेक्ट बनाओ, काम करो, आई विल हेल्प यू इन ऑल पॉसिबल वेज। तब हमने रिसर्च, तभी मैं माउंट आबू आया करने के लिए, आई एम हियर इन माउंट आबू बिकॉज ऑफ दैट, है ना, बिकॉज ऑफ दिस। मैंने 3 महीने बदल जाती है, आप चाहो 2 महीने बदल सकते हो, है ना, कितना इंटेंसिटी आपकी करने की इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या सिस्टम है कि हमारी बॉडी में 80,000 बिलियन सेल्स हैं, हमारी और बॉडी इज मेड अप ऑफ 80,000 बिलियन सेल्स, है ना, और हर सेल जिंदा है, हर सेल में लगभग 1,00,000 रिएक्शन 1 सेकंड में हो रही है। जब हम जल्दीबाजी करते हैं तो हमारी 1,20,000 रिएक्शन होती है। हमारी बॉडी में इतनी कैपेसिटी है कि 1,00,000 रिएक्शन के टॉक्सिन्स को वॉश कर सकती है 1 सेकंड में, 1 सेकंड से भी कम समय में। तो 1,20,000 जब आप प्रेशर में रहते हो, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, तो आप अपनी बॉडी में 1,20,000 रिएक्शन 1 सेकंड में एक सेल में बना रहे हो, मल्टीप्लाइड बाय 80,000 बिलियन कर लो, अभी आप कितने टॉक्सिन बन गए। और जब आप चिंता करते हो तो 1,40,000 रिएक्शन हो रही है, जब आप इरिटेट होते हो तो 1,60,000 रिएक्शन हो रही है, जब आप गुस्सा करते हो 1,80,000 रिएक्शन हो रही है, जब उदास हो जाते हो तो 2,00,000 रिएक्शन हो रही है। इसकी वजह अगर आप शांत रहना सीख जाओ, शांति को मेडिटेशन के द्वारा अचीव कर लो, तो 80,000 रिएक्शन हो रही है। शांति मतलब बीइंग इन द प्रेजेंट, पास्ट को हील कर दो, भविष्य को हील कर दो, सबकॉन्शियस माइंड को हील कर दो मेडिटेशन के द्वारा, तो आपकी आप वर्तमान में आ गए, आपके विचार 30 से 8 रह गए। इसको कहते हैं पीस। लव मीन्स एक्सेप्टिंग पीपल एज दे आर विदाउट बींग जजमेंटल, अनकंडीशनली सबको एक्सेप्ट करो, पति पत्नी को एक्सेप्ट करें, पत्नी पति को, पति पत्नी को, पत्नी पति को, मां बाप बच्चों को, जैसे भी हैं, एम्प्लॉइज एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज को, है ना, दिल से एक्सेप्ट करें और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें हम सब, तो क्या होगा, दैट इज लव। अगर आप इतने ऐसे बन जाते हैं, मेडिटेशन की तरह हम अचीव कर सकते हैं इसको, तो आपकी सिर्फ 60,000 रिएक्शन होती है। अगर आप सुपर सेंस ऑफ जॉय को एक्सपीरियंस करते हैं तो आपकी सिर्फ 40,000 रिएक्शन होती है, और अगर आप आनंद में रहते हो तो आपकी सिर्फ 20,000 रिएक्शन होती है। तो आप टॉक्सिन्स को वॉश कर सकते हो, जो आपका बैकलॉग इकट्ठा हो गया निकाल सकते हो, तो बीमारी खत्म होगी, नहीं हो गई। इस पर रिसर्च है ना, मतलब दैट इज यू अचीव ए लोअर मेटाबोलिक रेट, है ना, मेडिटेशन के द्वारा यू अचीव वेरी लोअर, स्ट्रेस से आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है और उससे मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, तो उसके द्वारा आप सारे बैकलॉग खत्म कर सकते हैं। दैट इज हाउ कहते हैं पीस हील्स, लव हील्स, हैप्पीनेस हील्स एंड ब्लिस हील्स, है ना, तो ये ऐसा होता है। और आउटर सेल्फ कॉन्शियस जब आप होते हैं, ये बॉडी रोल मटेरियल, तो आपके अंदर आप अनस्टेबल होते हो, क्योंकि तीनों चीज अनस्टेबल है, बॉडी अनस्टेबल है, आज कैसी कल कैसी, रोल बदल रहे हैं, रोज रोल बदलते हैं, कितने कितने रोल हमारे, मैं हॉस्पिटल में डॉक्टर हूं, घर में हस्बैंड हूं, घर में बाप भी हूं, मां के सामने बेटा हूं, है ना, दोस्तों के सामने दोस्त हूं, रोल बदल रहे हैं, हमेशा लेबल बदलते रहते हैं, और मटेरियल भी बदल रहा है, तो आप अनस्टेबल है, इनसिक्योरिटी है, इस इनसिक्योरिटी से 5 विकार जन्म लेते हैं, जो हम 5 विकार कहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये इनका जन्म ही इनसिक्योरिटी से हुआ है। काम विकार इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ इनसिक्योरिटी, क्रोध भी इनसिक्योरिटी है, लोभ भी इनसिक्योरिटी है, मोह भी इनसिक्योरिटी है, और अहंकार भी इनसिक्योरिटी है। ये जो है इन 5ों से, फिर इनके 2-2, जैसे हमने बताया ना, दो दो इनसे मेंटल टेंडेंसीज पैदा होती हैं, ये हैबिट्स बन जाती हैं, लस्ट से लेजीनेस और केयरलेसनेस बनती है, एंगर से सिनिसिज्म और हॉस्टिलिटी बनती है जो मैं थोड़ी देर पहले आपसे बात की, ग्रीड से लोभ से आप शक और अनुमान पैदा करते हैं, और अटैच मोह से चिंता और भय पैदा होता है, और ईगो से जल्दीबाजी पैदा होती है, प्रेशर्स पैदा होते हैं, और जेलसी पैदा होती है, और इनसे 10-10 चीजें और पैदा होती है। इसी को तनाव कहते हैं। ये सारा का सारा जो तनाव, सो कॉल्ड तनाव है, हमारे आउटर सेल्फ कॉन्शियस होने से होता है, राइट? और यही स्ट्रेस है। और ऐसी लगभग ऐसी स्टडीज हुई हैं जिन्हें बताया गया कि मूड डिसाइड्स योर फूड। हम कहते हैं फूड डिसाइड्स योर मूड। आज आपको पकौड़ा मिलने वाला है तो आप खुश हो जाते हैं ना, नहीं? जबकि इसका अपोजिट है, अपोजिट ट्रुथ है। अपोजिट ट्रुथ कैसे? मान लीजिए आपको जब आप अंदर से 100 से ज्यादा मूड स्टडी में ये बताया गया कि अगर आप जब आप अंदर से बिटरनेस महसूस करते हैं मन में तो यू कंपनसेट बाय टेकिंग स्वीट्स, जब अंदर से आप ड्राई महसूस करते हैं तो यू कंपनसेट बाय टेकिंग फ्राइड फूड्स, जब अंदर से बहुत ड्राई महसूस करते हैं तो आप क्या करते हैं, आपको हॉट और स्पाइसी चाहिए। ऐसे मूड टोटली डिपेंड्स ऑन, मतलब फूड डिपेंड्स ऑन योर मूड। भले आपको डायबिटीज हो तो भी मीठा खा लेंगे, आपको किसी डॉक्टर ने मना हजार मना किया हो कि आप हार्ट की बीमारी है, आपको तला हुआ नहीं खाना, तो भी आप खा लेंगे। तो मूड, जब आप मूड खराब होता है तो रॉन्ग मूड, रॉन्ग फूड खाते हो। मतलब ऐसा आदमी खुशी कहां ढूंढ रहा है, उसे खुशी नहीं है, वो खाने में खुशी ढूंढ रहा है। ऐसा आदमी सोने जाता है उसको नींद नहीं आती है, उसको नींद अच्छी नहीं आती, उसको नींद अच्छी नहीं आती है, क्योंकि उसकी ब्रेन की जो स्पीड फ्रीक्वेंसी होती है ईईजी की, वो 40 होती है, 40 चल रही होती है। नींद किसे कहते हैं? 4 से कम को नींद कहते हैं। तो 40 की फ्रीक्वेंसी पे अगर सोने जाएगा तो नींद आएगी उसको, 10 बजे सोने जाएगा 12 बजे तो उसकी फ्रीक्वेंसी 20 होएगी, 1 बजे तो उसकी फ्रीक्वेंसी जाके 10 होएगी, और 1 बजे जाके उसकी फ्रीक्वेंसी 4 होएगी। तो 1 बजे तो उसको गहरी नींद आएगी नहीं, फिर 1 बजे सोएगा तो सुबह 7 बजे उठेगा ना, 8 बजे उठेगा, फिर उसको वॉकिंग का समय है क्या, एक्सरसाइज करने का समय है, एक्सरसाइज करेगा ही नहीं। और ऐसा सारा दिन स्ट्रेस में रहेगा, क्वालिटी स्लीप तो आएगी नहीं, दिन में सोएगा और शाम को जिम में जाएगा। जिम में क्या करेगा आदमी जाके, वहां 2 एसी लगे हुए, 20 लोग ट्रेडमिल पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक लड़का 20 साल का एक्सरसाइज कर रहा है और आप 50 साल के हो, तो दिल तो कभी जवान बूढ़ा होता है क्या? आप उसको पहले दिन देखते हो तो एक्सरसाइज कर जा रहा है, तो आप भी पहले दिन ज्यादा करने की कोशिश करते हो, क्या होता है, यू आर नॉट एक्लेमेटाइज्ड है ना, एक्स्टम तो हो नहीं, तो उसको तो वो तो उसको वो तो रोज 30 मिनट करता है, आप 5 मिनट भी नहीं कर सकते हो, आप कोशिश करते थोड़ा तो कर लूं तो क्या होता है, वहीं पे क्लैप्स हो जाओगे। होते ना लोग, जो हार्ट अटैक 5 साल में आने वाला था उस दिन आ जाता है, नहीं आता है। अच्छा, जो 20 लोग एक्सरसाइज करें वो क्या निकाल रहे हैं, नाक से निकाल रहे हैं, नाक से क्या निकाल रहे हैं, CO2। वहां CO2 लेने के लिए गए हो आप, AC क्या कर रहा है, CO2 ठंडी करके वापस दे रहा है कि कुछ आपको ऑक्सीजन दे रहा है, ठंडी कर रहा है। तो आप एक्सरसाइज क्यों करते हो, ऑक्सीजन के लिए करते हो, CO2 के लिए करते हो? अच्छी बात है ना, रॉन्ग एक्सरसाइज करते हो। और फिर ऐसा आदमी क्या है, हमेशा टेंशन में रहने वाला आदमी क्या करता है, स्मोकिंग करेगा, शराब पिएगा, कोल्ड ड्रिंक पिएगा, नहीं चाय कॉफी पिएगा, क्योंकि उससे थोड़ा समय का रिलीफ मिलता है ना। और ऐसा आदमी सदा बीमार रहता है, सदा दुखी रहता है, क्योंकि विशेष साइकिल में फंस जाता है। और ऐसा आदमी दिस इज लॉस ऑफ ईज, बी मीन्स फियर, मारी मीन्स कॉन्स्टेंसी ऑफ, वो डर हमेशा बना रहता है अंदर से। इसके बजाय आप इनर सेल्फ कॉन्शियस हो जाओ तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, सोल कॉन्शियस, स्टेबल आत्मा, स्टेबल है और फुल प्रूफ सिक्योर है, फुल प्रूफ सिक्योरिटी है। और जैसे आग के पास जहां से गर्मी लगती है ना, ये जो 5 विकार बॉडी कॉन्शियस होते ही 5 विकार आ जाते हैं, काम क्रोध लोग ढूंढने नहीं पड़ते हैं। काम विकार क्या, किसको देख की दृष्टि से देखना ही काम विकार है ना, किसी को देह की तरफ आकर्षित हो जाना, चेहरे पर, उसके शरीर पर, उसके गुणों पर आकर्षित हो जाना, ये तो काम विकार है, उसी के सोचते रहना ने? और क्रोध लोभ मोह अहंकार, और इसके बाल बच्चे ये वाले ने बताया, जल्दीबाजी करना, ईर्ष्या द्वेष करना, ये सब क्या है, ये देहभान की निशानी है। दूसरों के दोष दिखाई देना, बदलने की भावना रखना, शक अनुमान, चिंता भय, जल्दीबाजी कर, ये सब क्या है, ये सब इससे पैदा होते हैं। तो ऑटोमेटिक आप अनस्टेबल हो जाते हो, और जैसे ही अपने को आत्मा समझते तो क्या होता है, आप जैसे झील के पास जाओ तो ठंडी हवा अपने आप आती है, ऐसे ही आत्मा के सात गुण आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगते हैं। मैं आत्मा हूं ये समझते क्या होता है, पवित्रता की फीलिंग आती है, शांत हो जाते हो, पास्ट वर्तमान में रहने लगते हो, पीस लव आ जाता है, सबको एक्सेप्ट कर ले, मैं भी आत्मा ये भी आत्मा, भले कोई भी है, बच्चा है वो भी तो आत्मा है, आपकी पत्नी भी तो आत्मा है, आपके पति भी तो, मां बाप भी तो आत्मा है, आपकी भाई भी तो आत्मा है, आपका पीएन भी तो आत्मा है, नहीं जैसे आप हो आप भी रोल प्ले कर रहे हो, वो भी रोल प्ले कर रहा है, तो आपके अंदर क्या आता है, लव आ जाता है, हैप्पीनेस आ जाती है, खुशी आनंद आ जाता है और शक्तियां आ जाती हैं। तो ये नेचुरल टेंडेंसी है। ओके, इज इट क्लियर? तो ये जो है आपके अंदर जो सातों एनर्जी, आत्मा के सात एनर्जी हैं, नेचुरल इनेट एनर्जीज हैं, जैसे अपने को आत्मा समझते तो आपके अंदर इनेट एनर्जीज आपके मैनिफेस्ट करने लगे, आपकी लाइफ में अपने आप आने लगती, और जैसे आप इसको प्रैक्टिस करते हो, मैं आत्मा हूं, हरेक को आत्मा देखते हो, तो आपके अंदर ये वैल्यूज जब आप कर्म में आएंगे, जब आप अपने को आत्मा समझ के दूसरों को भी आत्मा देखते हैं और राज्यों को मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, तो ये वैल्यूज आपकी लाइफ में आने लगती है। ये वैल्यूज क्या है बेसिकली, जैसे तीन प्राइमरी कलर्स होते हैं ना, कौन कौन से, ब्लू रेड एंड येलो, इनसे सेकेंडरी कलर्स कितने सारे बन जाते हैं, 150 सेकेंडरी कलर्स बन सकते हैं। तो जब सातों एनर्जी आपके अंदर हैं, तो जब कर्म में आएंगे तो आपकी लाइफ में सत्यता दिखाई देगी, ट्रूथफुलनेस दिखाई देगी, फियरलेसनेस दिखाई देगी, नम्रता दिखाई देगी, सहनशीलता दिखाई देगी, संतुष्टता दिखाई देगी, एकाग्रता, दृढ़ता और धीरेता दिखाई देगी। ऐसे बहुत सारे दैवी गुण आपके, अच्छे गुण, वैल्यूज आपकी लाइफ में आ जाएंगे बिना एफर्ट के, जो कि हैप्पीनेस के लिए जरूरी है, स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए जरूरी है। ये आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपके जो क्या कहें, आर्मामेंट्स हैं, टू बी हैप्पी, टू बी स्ट्रेस फ्री, टू मैनेज स्ट्रेस। और आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, और प्रॉपर फूड, जब आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, आपके जीवन में खुशी पहले से है, तो आप हेल्दी फूड खा सकेंगे। आपके सामने गुलाब जामुन रखा हो, एक सेब रखा हो, क्या खाना पसंद करेंगे? जल्दीबाजी वाला व्यक्ति क्या करेगा, जो प्रेशर में है वो क्या खाएगा? गुलाब जामुन खाएगा ना, जिसके बाद चबाने की पेशेंस है वही तो खाएगा सेब। सेब निकल तो नहीं सकते हो कि सेब ऐसे ही डाला और मुंह में निकल गए, गुलाब जामुन तो ऐसे डाला और निकल जाएंगे ना, नहीं? तो इसके लिए पेशेंस चाहिए ना, आपको नहीं चाहिए? तो पेशेंस होगी तो तभी तो चबाएंगे। आपको कोई स्प्राउट खा लो, आप अंकुरित खाओ, मूंग मेथी खा लोगे क्या? जल्दी वाला खाएगा क्या अंकुरित मूंग? नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना है, मैं टाइम नहीं है ना। और आप इसका पेशेंस होगा वही तो खाएगा, साबुत खाएगा तो क्या हो जाएगा उसके? तो ये मतलब चाहिए ना आपको। तो ऐसे आदमी के पास विल पावर है टू हैव हेल्दी फूड, प्रॉपर फूड, राइट? ऐसे आदमी को नींद हमेशा उसकी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना थॉट्स की, 5-6 ही रहती है। सोने जाए तो एक मिनट में नींद आती है, बेड पे ऐसे किया और नींद आ गई, और गहरी नींद आती है, फर्स्ट क्लास डीप स्लीप, डेल्टा स्लीप आती है। और ऐसा आदमी समय पर उठता है, हम लोग कभी ऐसा नहीं होता कि 3:30 के बाद उठे, 3:30 बजे हमेशा उठ जाते हैं, एक्यूरेटली उठ के एक घंटा मेडिटेशन करते हैं, फिर अपने नहा धो के तैयार होते हैं, फिर वॉकिंग करने जाते हैं, फिर हमारी मुरली क्लास में जाते हैं, और एक घंटा पूरा वॉक कर पाते हैं। कभी नहीं होता कि हम वॉक ना करें, बरसात हो रही तो भी करते हैं, छाता लेके भी करते हैं, कभी मिस नहीं करते। और फिर ऐसे आदमी को कभी आवश्यकता है क्या चाय कॉफी की या स्मोकिंग करने की? हम कभी पीते ही नहीं ना चाय कॉफी, पीते ना ड्रिंक करते ना कुछ, ना कभी कोई ऐसी आदत ही नहीं कोई भी, ना कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आवश्यकता ही नहीं होती। हमें पानी बहुत अच्छा है, हमारे लिए दूध बहुत अच्छा है ना, कभी इच्छा भी नहीं होती। तो ऐसा आदमी सदा हेल्दी हैप्पी है ना। इनक्योरेबल का मतलब क्या है? इट डज नॉट मीन इट इज नॉट क्योरेबल, इट मीन्स इट इज इन प्लस क्योरेबल, इट इज क्योरेबल इफ यू गो इन, अंदर जाके देखो मैं कौन हूं। तो इसकी तरीका क्या है? इफ यू वॉन्ट टू बी हेल्दी, इफ यू वॉन्ट टू बी स्ट्रेस फ्री, तरीका क्या है? इफ यू वॉन्ट टू बी स्ट्रेस फ्री, तरीका क्या करना है आपको? हेल्दी शब्द का मतलब दो शब्दों से बना, हील प्लस डाई, दैट मीन्स हील डाई सेल्फ, हील योर सेल्फ। सारे विश्व में एक ही आदमी है जो आपको हील कर सकता है, कौन है वो? कौन है? सिर्फ आप हैं। डॉक्टर आपको गाइड कर सकते हैं, घर वाले आपकी मदद कर सकते हैं, भगवान भी आपको हील नहीं कर सकता है। भगवान भी आप अगर एक कदम चलेंगे तो भगवान आपकी हजार कदम मदद कर सकता है, राइट? अगर आप स्ट्रेस फ्री होना चाहते हैं, तनाव मुक्त होना चाहते हैं, तो आपको तनाव मुक्त होने के लिए अपने हाथ में जिम्मेवारी लेनी होगी, राइट? इफ यू वॉन्ट टू बी स्ट्रेस फ्री, देन वॉट इज द मेथड? दिस इज इन योर हैंड। हाँ, एक ही व्यक्ति, कोई आपका बच्चा, आपका कोई एम्प्लॉयर आपको स्ट्रेस फ्री नहीं बना सकता है, आपकी पत्नी या पति नहीं बना सकते हैं। कौन बना सकता है? सिर्फ आप ही अपने को बना सकते हैं। क्या तरीका है? सेल्फ अवेयरनेस। ये दूसरी टिप है कि हेल्दी मीन्स स्वस्थ, स्व मीन्स इनर सेल्फ, स्था मीन्स कॉन्शियस। स्व माने अंदर वाला मैं, आत्मा, और स्वस्थ स्था स्थ माने स्थित। तो अगर आप सोल कॉन्शियस रहे सारा दिन, चलते फिरते उठते बैठते, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, नाउ आई नो हु आई एम, आप वो नहीं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आगे क्या है? वंडर नहीं करना है ना, तो समझना है कि मैं कौन हूं। मैं ही वो ट्विंकलिंग स्टार हूं विच मेक्स द बॉडी फंक्शन। वो निकल जाए सब कुछ बंद हो जाता है, ना हार्ट काम करता है, ना आंखें देखती है, ना मुंह बोलता है, ना कुछ कान सुनता है, ना सांस आता है। मैं चला रहा हूं सबको, है ना, सब कुछ। तो अगर आप ये समझ जाएं, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड अबव द स्काई, इन द स्काई नहीं है ना, तो एक और परमात्मा है जो वो भी एक स्टार है ना, लाइक ए डायमंड, एवर शाइनिंग है। आत्मा टिमटिमाती है, परमात्मा सदा ही शाइनिंग, एवर शाइनिंग है। वो सातवें एनर्जी का पावर हाउस है ना। तो अगर आप ये समझ जाएं, और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच टू हील थाइसेल्फ, वन नीड्स सेल्फ एम्पावरमेंट, एंड एम्पावरमेंट कम्स फ्रॉम ट्रू नॉलेज, एंड ट्रू नॉलेज कम्स फ्रॉम इंफॉर्मेशन, ट्रू इंफॉर्मेशन, राइट, एजुकेशन एंड काउंसलिंग अबाउट द गॉड, अबाउट सोल माइंड बॉडी। और हमारे एक घड़ी है, हमारे अंदर एक घड़ी लगी हुई है जिसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, हाइपोथैलेमस में। वो घड़ी के अनुसार आप हर काम करो। उसमें मेडिटेशन करने का समय है, प्लानिंग करने का समय है, वॉकिंग करने का समय है, आपको ब्रेकफास्ट करने का समय, लंच करने का समय, डिनर करने का समय, मोस्ट एफिशिएंटली काम करने का समय है। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपकी आपकी जो ना सारी कम समय में ज्यादा काम होगा, ज्यादा एफिशिएंटली काम होगा। हम आजकल क्या करते हैं, जिस समय हमारा खाना खाने का टाइम है ना, शाम को जो 6 बजे खाने का, 7 बजे खाने का टाइम है, हम काम के लिए 10 उस खाने का टाइम 10 बजे सरका देते हैं। 10 बजे तो आपको एसिड नहीं निकल रहा, वो आपको सारा रहा तंग करने वाला खाना जो खाया आपने। आप सुबह ब्रेकफास्ट करना चाहिए राजा की तरह, लंच करना चाहिए मिडिल क्लास आदमी की तरह, डिनर करना चाहिए कंजूस आदमी की तरह। आजकल उल्टा करते हैं, ब्रेकफास्ट मिस, लंच थोड़ा सा, डिनर बहुत हैवी करते हैं। क्या रात में क्या डांस करना है क्या आपको? सोना है ना, तो क्या करने जा रहे हैं आप? उल्टा कर रहे हैं। तो ये समझने की आवश्यकता है। तो ये जो है, ये छोड़ देता हूं मैं, ये आत्मा, ये आपने सुना होगा मन बुद्धि संस्कार आत्मा की 3 शक्तियां। ये भी मैं, मन हमारा फिजिकल नहीं है, मन हमारा नॉन फिजिकल है, टीम कहते हैं, और ये ब्रेन हमारा फिजिकल है ना। और ट्रूथ, जितना ट्रू कॉन्शियसनेस में रहेंगे उतना आपकी पॉजिटिव टीम बनती जाएगी, जितना आपने को बॉडी समझेंगे, रोल समझेंगे, आपकी नेगेटिव टीम बनती जाएगी, है ना। और ये नेगेटिव टीम बनने, जब भी आपको नेगेटिव विचार करते हैं तो आपकी हाइपोथैलेमस में, जो ब्रेन का कंट्रोल रूम है दोनों का, उसमें न्यूरोपेप्टाइड बनते हैं, नेगेटिव केमिकल्स बनते हैं, और 1 सेकंड से भी कम समय आपकी सेल्स पे पहुंच जाते हैं, और आपके अंदर सिंपैथेटिक सिस्टम चालू हो जाता है, अलार्म रिस्पॉन्स चालू हो जाती है, हार्ट रेट बढ़ता है, बीपी बढ़ता है, आप एकदम, आपकी खून गाढ़ा हो जाता है, लड़ने के मूड में आ जाते हैं, फाइटिंग मूड में आ जाते हैं, और आपके स्ट्रेस हार्मोन निकलना शुरू हो जाते हैं, एड्रेनल निकलना शुरू हो जाता है, कॉर्टिसोल निकलता है, और उससे फाइट और फ्लाइट, फीलिंग ऑफ डिसीज, सैडनेस, लैक ऑफ एनर्जी, और पॉजिटिव टीम बनती है, सेल्स ऑफ ब्रेन एंड बॉडी एंडोर्फिन निकालती है, नेचुरल मॉर्फिन निकालती है आपके अंदर, तो सारे पेन खत्म हो जाता है, सिर का दर्द, गर्दन का दर्द, कमर का दर्द, पेट का दर्द, हार्ट का दर्द, सब खत्म हो जाते हैं। एंड यू फील वेरी लाइट, बहुत अच्छा महसूस करते हैं, और आपकी रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स चालू हो जाती है, और आपके फीलिंग ऑफ वेलबींग, हैप्पीनेस, हेल्थ, पुलिंग ऑफ एनर्जी, एनर्जी से भर जाते हैं। ये राज है हेल्दी बनने का, ये राज है स्ट्रेस फ्री रहने का। और आपकी बॉडी में जो 8 अंग हैं, उसमें से एक अंग जन्म से कमजोर है, जब आप नेगेटिव करते हैं तो उस पर ज्यादा असर होता है। वही ज्यादा बीमार होता है। एक अंग बीमार होने के बाद बाकी अंग भी बीमार हो जाते हैं। तो ये दिखाया गया ऊपर ना, आप देख रहे हैं एशिया, हायर ब्रेन हमारा है, हायर ब्रेन का फंक्शन है एशिया, लगा है ना, मैंने एशिया लिखा हुआ है, IQ, EQ, SQ, HQ। IQ मींस इंटेलिजेंस क्वोशेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, इनसे आप इमोशनली कनेक्टेड, उनका भी आप ध्यान रख सकते हैं। स्पिरिचुअल क्वोशेंट मींस सारे विषय का आप अच्छा सोच सकते हैं, और हैप्पीनेस क्वोशेंट आप सदा खुश रहने की बात सोच सकते हैं। और लोअर ब्रेन रिएक्शन करता है, वो जानवर होते हैं, जानवर में रिएक्शंस करते हैं, और हम और ये जो पांच विकार हमारी रिएक्शंस हैं, और इसके 10 बातें मैंने बताई वो आपकी वो हैं। किंतु आत्मा के पास अगर 7 एनर्जी हैं तो ही आत्मा एशिया लगा सकती है, IQ, EQ, SQ, HQ का बैलेंस कर सकती है। आज इसकी आवश्यकता है कि अपने को आत्मा समझ के हम परमात्मा को याद करें, जो कि सुप्रीम पावर हाउस है, तो हमारे पास 7 एनर्जी आ जाएंगी और हम तब एशिया लगा सकेंगे और तब ये रिएक्शन खत्म हो जाएंगे। रिएक्शन ही हमारी प्रॉब्लम है, इसी से सारी स्ट्रेस पैदा हो रही है। ये देखिए हमारा ब्रेन है, आप देख रहे हैं, ये देख लीजिए, ये हमारे न्यूरॉन्स हैं, बीच में देखिए जो ब्राउन रंग का, ये हमें हाइपोथैलेमस है, और इसमें हर विचार के लिए केमिकल बन रहा है, इसको न्यूरोपेप्टाइड कहते हैं, हर भावना के लिए बनता है केमिकल, और 1 सेकंड से भी कम समय में हमारी सेल्स पे पहुंच जाता है, और ब्लड के द्वारा, खून के द्वारा हमारी सेल्स पे पहुंच जाता है, और हर सेल पे इसके लिए एक रिसेप्टर्स होते हैं, उसे न्यूरोपेप्टाइड कहते हैं, उसको रिसेप्टर्स होते हैं, उस पर लॉक एंड की तरह लग जाते हैं, और फिर सेल में रिएक्शन शुरू हो जाती है। नॉर्मली 1 लाख रिएक्शन हो रही है, जैसे आपने चिंता, आपने जल्दीबाजी का विचार आया तो केमिकल बना और सेल में रिएक्शन एकदम 1,20,000 हो जाएंगे, चिंता का प्रेशर आया 1,40,000 हो जाएंगे। ये लाल लाल रंग के केमिकल देख रहे हैं जो ऊपर से बन के आ रहे हैं, प्रोटीन्स हैं ये, और सेल पे आके ताले चाबी की तरह से ऐसे लग जाते हैं। ये ब्लड के द्वारा जा रहे हैं, ये सेल की सेल है ना, हमारी कोशिकाएं ऐसे 80,000 कोशिकाएं हमारी बॉडी में, और इस पर रिसेप्टर्स होते हैं, ये देखिए रिसेप्टर इस वजह लग जाएंगे, और फिर रिएक्शन एकदम से बढ़ जाती है ना। अगर शांति का विचार आएगा, खुशी का विचार आएगा, तो वो सेल में रिएक्शन कम हो जाएंगे, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, राइट। तो मैं समझता हूं इसको, बस मैं टाइम भी मेरा पूरा हो गया, चलो फिर एक बार आप देख लीजिए कैसे रिएक्शन बढ़ती है। जैसे देखें सर, जैसे लॉक एंड की लॉक हुआ ना, सेल देखिए एकदम से सेल में रिएक्शन बढ़ जाएंगे ना, एकदम से रिएक्शन बढ़ जाएंगे। जो भी विचार, खुशी का, दुख का, जो भी विचार होते हैं उसके अनुसार होता है। तो ये आपको, ये हमारे ब्रेन में EEG हमने करके देखा, ये लाल तार हरी तार, जैसे ना सिंपैथेटिक सिस्टम पैरासिंपैथेटिक सिस्टम कैसे असर होता है। जैसे पेशेंट पहले दिन आए तो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव था ज्यादा, अलार्म रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा थी, स्ट्रेस रिस्पॉन्स नहीं थी। 7 दिन सीखने के बाद मेडिटेशन एकदम अलार्म रिस्पॉन्स कम हो गई, रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स बढ़ गई, 1 साल के बाद दोनों का बैलेंस हो गया। लाइफ इज अ बैलेंस ऑफ अलार्म रिस्पॉन्स एंड रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स। चैलेंज को रिलैक्स माइंड से फेस करना, जो भी चैलेंज लाइफ में रोज आते हैं, बट यू हैव टू फेस दोज चैलेंजेस विद रिलैक्स्ड माइंड। हमारे सामने रोज चैलेंजेस होते हैं, हम रिलैक्स्ड माइंड से फेस करते हैं। तो मेडिटेशन करने से आपकी रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स बढ़ जाएगी, जो भी आपके प्रेशर्स हैं, चैलेंजेस हैं, आप उनको ठंडे दिमाग से फेस करेंगे। इंचार्ज का मतलब क्या होता है, इंचार्ज का मतलब क्या होता है, सुपरवाइजर, हेड द डिपार्टमेंट। हमारी दादी जी बताती थी इंचार्ज का मतलब जो इन रह के अपने आप को चार्ज करता रहे परमात्मा से, शांति प्यार खुशी की एनर्जी से अपने को भरता रहे, और जो उसके नीचे चार्ज में लोग हैं उनको शांति प्यार खुशी बांटता रहे, उसको बोलते हैं इंचार्ज, है ना। बाकी जो आंख दिखाते हैं गुस्सा करके करते हैं वो आउट चार्ज है, ठीक है। तो क्या बनना, इंचार्ज बनना है, आउटचार्ज बनना है, इंचार्ज। अपने घर में भी आप इंचार्ज होते हो ना, तो घर में भी आंख दिखा के बात करते हो ना, गुस्सा करके बात नहीं, शांति प्यार खुशी बांटनी चाहिए। तो ऐसे ही हम लोग, ये मैं समझता हूँ, ये हमने हार्मोन्स की स्टडी की, हमने बहुत सारी चीज का बहुत सारी स्टडीज की, और फिर हमने कैसे देखा कि अपने को आत्मा की जो एनर्जी है, 7 एनर्जी मन के द्वारा, टीम के द्वारा बॉडी में जाती है, और फिर अगर आप 4 से 5 अपना आधा घंटा जो मेडिटेशन करते हैं, अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को 7 एनर्जी अपने अंदर भर लें, और फिर 8 बजे तक आप चुप रहें, अपनी टीम को पॉजिटिव रखें। इसके लिए हम परमात्मा महावाक्य 8 बजे तक सुनते हैं या उसको स्टडी करते हैं, तो हमारे अंदर वो एनर्जी हमारी बॉडी में आ जाती है, जो 7 एनर्जी, और फिर हम शुद्ध सात्विक भोजन खाते हैं, प्रॉपर सैर करते हैं, प्रॉपर नींद करते हैं, प्रॉपर दवाई अगर आवश्यकता है तो लेते हैं, तो एनर्जी हमारी बॉडी के बाहर इकट्ठी हो जाती है, इसको हम ऑरा कहते हैं, आभा मंडल, शांति प्यार खुशी की एनर्जी, ये हमारी कवच बन जाती है ताकि सामने वाला गुस्सा करे, कोई प्रॉब्लम आए तो हम उसको उससे अफेक्ट नहीं होते हैं और इस तरह से हम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। तो ये हमने, ये सब मैं छोड़ देता हूँ, आज टाइम पूरा हो गया। मतलब हमने जो है हमारी एंजियोग्राफ्स भी खुल गए, देखिए आप देख रहे हैं 80% ब्लॉक खुल गया है, उधर देखिए ये इतना लंबा ब्लॉक खुल गया है, 100% ब्लॉक खुल गया है, ये भी 100% ब्लॉक खुल गया, ये मल्टीपल ब्लॉक्स खुल गए, 80 और 90% ब्लॉक खुल गए बिना ऑपरेशन के। इस पेशेंट को दो बार हार्ट अटैक आया, हार्ट की पंपिंग 30% रह गई, नॉर्मली 60% होती है, हार्ट की पंपिंग बढ़ के 45% हो गई, हार्ट नया बन गया और ये एक 80% ब्लॉक खुला, इसकी हार्ट की पंपिंग सिर्फ 20% रह गई थी और इसकी देखिए फिर 50% हो गई। तो हार्ट बिल्कुल नया रीजनरेट हो जाता है मेडिटेशन के द्वारा, 100% ब्लॉक खुला। कंट्रोल रूम में ब्लॉक्स बढ़ जाते हैं अगर आप मेडिटेशन नहीं करते, डाइट एक्सरसाइज फॉलो करते हैं, क्योंकि हर विचार के लिए आपके थॉट पैटर्न्स रिस्पॉन्सिबल है, हर ब्लॉक के लिए, वो हमको पता लग गया है और हम उसको बता देते हैं कि भी आपके ये ब्लॉक इस कारण से है, तो आप इसको मॉडिफाई करेंगे मेडिटेशन के द्वारा, तो आप ब्लॉक निकल जाता है। और ये देखिए ब्लॉक बढ़ गया, ऐसे ही एक ब्लॉक देखिए 100% ब्लॉक, कैल्सिफाइड ब्लॉक है, एकदम मोन जैसे कैल्शियम बन जाता है, पूरा रुक जाती है आर्टरी, और ये देखिए फिर पूरा खुल गया। तो इस तरह से हम ये करते हैं, ये प्रोग्राम इस तरह से रन करते हैं, और ये प्रोग्राम में हम लोग मेडिटेशन सिखाते हैं, डाइट एक्सरसाइज, पिकनिक, सब कुछ करते हैं। और आज हम बच्चों को स्कूलों में सिखा रहे हैं, कॉलेजों में सिखा रहे हैं बच्चों को, ताकि उन भविष्य में वो हेल्दी पॉपुलेशन बने, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज से मुक्त बने। और फिर हमने एक सेकेंडरी इंटर्नशिप रिमिशन प्रोग्राम करते हैं अपने यहाँ, जिन लोगों की एंजियोग्राफी हो जाती है, हार्ट अटैक होते हैं, उनको वो इको करा लेते हैं और उनको वो हमें रिपोर्ट्स भेजते हैं अपनी, फिर उनको हम अपने यहाँ बुलाते हैं, या बाईपास एंजियोप्लास्टी भी करा चुके होते हैं। आज तक हम लोग 156 ग्रुप कर चुके हैं अभी तक, और 9000 से अधिक पेशेंट, 9500 से ज़्यादा पेशेंट हमारे पास इस प्रोग्राम में आ चुके हैं यहाँ पर, और इस तरह से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और सारे विश्व में ये प्रोग्राम जा चुका है। तो टेक होम मैसेज क्या है आपके लिए, आप जो भी काम करें, नेचुरल, बी नेचुरल, आप, हम आत्मा हैं, बी सोल कॉन्शियस, नॉट बॉडी और सोल कॉन्शियस। और बार बार आत्मा के साथ गुण जो है ना, आई एम ए नॉलेजफुल बींग, आई एम ए पीसफुल बींग, आई एम ए लवफुल बींग, आई एम ए प्योर बींग, आई एम ए हैप्पी बींग, आई एम ए पावरफुल बींग, ये बार बार अपने को रिमाइंड दे रहा है, ना कि आई एम ए शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन, आई एम ए वेरी एंशियस पर्सन, दिस इज नॉट योर क्वालिटी, यू आर नॉट बॉर्न एज ए शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन, राइट, यू आर बॉर्न एज ए पीसफुल पर्सन, पीसफुल बींग, है ना। तो उसको अपने आपको वापस अपने रिमाइंड करें, इसके रोज 4 बजे से मेडिटेशन करें, आधा घंटा मेंटल केयर, 8 बजे तक आप चुप रहें, मुरली सुने, 7 से 8 मुरली सुने, इससे आपका कॉर्टिसोल सर्ज ठीक हो जाएगा। और खाने के लिए ईट नेचुरल, ज्यादा मात्रा में फल सब्जियां, अंकुरित दलिया खाएं, और सुबह 8 से सूर्य उदय के बाद आधा घंटा सैर, 45 मिनट सैर करें, 10 बजे सो जाएं, 4 बजे उठ जाएं और प्रॉपर दवाई खाएं। ओम शांति।